आगे सबक देखिए भाई। वस्सानी अल किस्म उस्सानी मिन तमयीज़ वहुवा मा यरफ़ुल इबहाम अन ज़ातिन मुक़द्दरतिन यरफ़ुहू अन निस्बतिन काना ज़ाहिरु अन यक़ूल अन ज़ातिन मुक़द्दरतिन फी निस्बतिन फी जुमलतिन लकिन लम्मा काना अल इबहाम फी तरफिन निस्बति यस्तलज़िमु अल इबहाम फीहा ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه قال عن نسبة مقتصرا عليها। भाई गुज़श्ता सबक में हम तमीज के बारे में पढ़ रहे थे भाई। साहिब काफिया ने आपको बतलाया था कि तमीज वो इबहाम जो बैतबार वजा के हो उसको दूर करती है जात मुकद्दरा से या जात मस्कूरा से। भाई तो ये जात मुकद्दरा और जात मस्कूरा को जो जिक्र किया ये दर असल इशारा कर दिया तमीज की किस्मों की तरफ कि तमीज दो किस्म पर है। कभी तमीज जो है जात मस्कूरा से इबहाम को दूर करेगी और कभी जात मुकद्दरा से इबहाम को दूर करेगी। और फिर तफसील बयान की कि वो तमीज जो जात मस्कूरा से इबहाम को दूर करती है वो इबहाम को दूर करेगी मुफरद से भाई, और वो मुफरद मिकदार भी हो सकता है और गैर मिकदार भी हो सकता है भाई। और फिर साहिब जामी ने आपको ये भी बतलाया था कि जो मुफरद से तमीज आती है इसको इसमें ताम जो है ये नसब देता है, वो इसम जो ताम है वो नसब देता है। जैसे इंदी रितलुन जैतन, ये जैतन को नसब किसने दिया? रितलुन, ये जो इसमें ताम आया। और इसम ताम होता है चार चीजों के जरिए, या तो वो ताम होगा तनवीन के जरिए, या वो ताम होगा नूने तस्निया के जरिए, या वो ताम होगा नूने जमा के जरिए, या वो ताम होगा इजाफत के जरिए। ताम होने का माना यह है कि इसम ऐसी हालत में हो कि उसी हालत में उसकी आगे इजाफत न हो सके। जब इसम पर तनवीन आ रही है तो मालूम हो इसम ताम हो चुका है, आगे कोई मुजाफिले नहीं आ रहा, आगे इसकी इजाफत नहीं हो रही, क्योंकि तनवीन के होते हुए इजाफत नहीं हो सकती। जब भी इजाफत करनी पड़ेगी तनवीन को गिराना पड़ेगा। इसी तरह नूने तस्निया और नूने जमा ये भी इसम के ताम होने की अलामत है। नूने तस्निया और जमा के होते हुए इसम की आगे इजाफत नहीं हो सकती। और इसी तरह जब आगे मुजाफिले आ रहा हो, यानी एक मुजाफिले पहले ही आ रहा है और आप मुजाफ की आगे किसी और इसम की तरफ इजाफत करना चाहते हैं तो यह जायज नहीं, क्योंकि एक मुजाफ के लिए एक ही मुजाफिले आ सकता है। तो जब इसम इन चीजों के जरिए ताम होता है तो इसकी मुशाबहत आ जाती है फेल के साथ। जैसे फेल के बाद फाइल आता है और फेल उसके जरिए ताम हो जाता है और उसके बाद फिर आगे वो मफूल बिही को भी नसब देता है। तो ये इसम भी जब इन चीजों के जरिए ताम हो गया तो ये फेल जैसा हुआ, और फेल तो ताम होने के बाद मफूल बिही को नसब देता है, तो लिहाजा ये इसम भी अब ताम होने के बाद आगे तमीज को नसब देता है। तो ये तमीज जो है गोया इसके लिए मफूल बिही की तरह हो गई। फिर उसके बाद साहिब काफिया ने आपको बतलाया था कि तमीज जो है उसको मुफरद लाएंगे अगर वो जींस हो। जींस होने का माना यह है कि उसके अज्जा बाहम एक दूसरे के मुशाबे हों भाई, और नीज वो ता के बगैर कलील और कसीर सब पर उसका इतलाक हो सके। मसलन देखो, जैसे चावल थोड़े हों तो भी चावल, ज्यादा हों तो भी चावल, गंदुम कलील हो तो भी गंदुम, ज्यादा हो तो भी गंदुम, पानी थोड़ा हो तो भी वो पानी है, ज्यादा हो तो भी वो पानी है। मसलन आपके पास एक बाल्टी पानी है, आप उस पानी के 10 हिस्से कर देते हैं तो जो 10 हिस्से बने हर हिस्सा वो भी क्या कहलाएगा? पानी। और जो इकट्ठा है वो भी क्या है? पानी। और देखो ये अज्जा एक दूसरे के मुशाबे हैं, हर हिस्सा एक दूसरे के मुशाबे है। और नीज ता के बगैर कलील और कसीर पर भी उसका इतलाक हो सके भाई, जैसे तमरतुन और तमरुन, आपने बिलखसूस कहना हो एक खजूर तो कहेंगे तमरतुन गोल ता के साथ, ये ता वहदत की है, और अगर ता हटा दें तमरुन तो याद रखो ये इसमें जिन्स है, कलील और कसीर सब पर इसका इतलाक होता है। यानी एक खजूर हो तो भी ये तमरुन है, एक से ज्यादा हो दो हो तो भी तमरुन है, दो से ज्यादा हो तो भी तमरुन है, लेकिन बिलखसूस आप एक खजूर कहना चाहते हैं तो फिर ता के साथ कहेंगे तमरतुन। तो बगैर ता के तमरुन उसका इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है, यानी इसमें जिन्स है। तो तमीज जब जिंस हो तो फिर उसको हमेशा मुफरद लाते हैं, जब तमीज जिंस हो तो फिर उसको हमेशा मुफरद लाते हैं, अगरचे माकबल में इसका जो मुमय्यज है वो तस्निया या जमा ही क्यों ना हो। जैसे इंदी रितलुन जैतन, ये जैत जो है यानी जैतून का तेल, ये जिंस है भाई। कलील और कसीर पर इसका इतलाक होता है और नीस इसके अज्जा बहम एक दूसरे के मुशाबे हैं। तो अब माकबल में ये जो रितलुन आया, ये जो मुमय्यज आया है, ये चाहे मुफरद हो, तस्निया हो, चाहे जमा हो, हर सूरत में तमीज को आगे मुफरद ही लाएंगे। इंदी रितलुन जैतन, इंदी रितलानी जैतन, इंदी अरतालुन जैतन। वजह यह कि यह जैत जो है जिंस है, जिंस का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है, तो लिहाजा जब यह कलील और कसीर सब पर इतलाक होता है तो तस्निया जमा लाने की जरूरत ही नहीं। जबकि मसलन रजुलुन का लफ्ज है, रजुल एक हो तो कहेंगे रजुल, दो हो तो कहेंगे रजुलानी, ज्यादा हो तो कहेंगे रिजालुन। तो रजुल का इतलाक कलील और कसीर सब पर नहीं होता, लेकिन जैद का इतलाक तो कलील और कसीर, यूं कहो जिंस का इतलाक तो कलील और कसीर सब पर होता है। जब सब पर उसका इतलाक है तो तस्निया और जमा लाने की जरूरत ही नहीं है, इल्ला ये कि अनवा का इरादा किया जाए। किसका? अनवा का इरादा किया जाए, फिर आगे तमीज चाहे जिंस ही क्यों ना हो उसको तस्निया और जमा लाएंगे। मसलन मैं कहता हूं इंदी रितलानी जैतन, मेरे पास दो रितल हैं बैतबार जैतून के तेल के, यानी मेरे पास दो रितल जैतून का तेल है, लेकिन आप बतलाना चाहते हैं कि जो दो रितल हैं ये दो किस्म के हैं, दो नौ के हैं, यानी एक रितल एक नौ का है, दूसरा रितल दूसरी नौ का है। तो अब अगर मैं यूं कहूं इंदी रितलानी जैतन, अब मैं तमीज को मुफरद लाऊंगा तो वो जिंस है, कलील और कसीर पर उसका इतलाक हो रहा है, लेकिन लेकिन वो अनवा पर दलालत नहीं करता। कलील और कसीर पर तो दलालत करता है लेकिन अनवा पर दलालत नहीं करता, लिहाजा अनवा बतलाने के लिए फिर उस जिंस को भी तस्निया या जमा लाएंगे। तो क्या कहेंगे? इंदी रितलानी जैतैनी, इंदी रितलानी जैतैनी, मेरे पास दो रितल हैं बैतबार दो किस्म के जैतून का तेल, यानी एक रितल एक किस्म का है, दूसरा रितल दूसरी किस्म का। इसी तरह जमा बतलाना चाहते हैं तो इंदी अरतालुन जुयूतन, मेरे पास कई रितल हैं, कई किस्म का जैतून का तेल। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद एक इश्काल जिक्र किया था कि जो साहिबे काफिया ने सिर्फ अनवा का इस्तेसना किया, क्या कहा था इबारत में, फयुफ्रदु इनकान जिंसन, कि तमीज को मुफरद लाएंगे अगर वो जिंस हो, इल्ला अन तुक्सदल अनवा, मगर ये कि अनवा का इरादा किया जाए। तो इस्तेसना सिर्फ किसका किया? अनवा के इरादे का किया कि उस वक्त सिर्फ आप तस्निया या जमा ला सकते हैं, हालांकि बाज औकात आदद बयान करने के लिए भी तस्निया और जमा लाते हैं। तमीज जिंस होती है, तमीज क्या?
जिंस,
जिंस का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है, लेकिन बाज औकात आदत बयान करने के लिए उस जिंस को भी तस्निया और जमा लाते हैं। जैसे उसकी मिसाल इन्होंने जिक्र की थी कि ताबा जैदुन जलसतैनी, और इसी तरह ताबा जैदुन जिलसतैनी। जलसतैन किस लिए आया? आदत बयान करने के लिए। जिलसतैन किस लिए आया? नौ बयान करने के लिए। तो देखो वहां तमीज आई आदत बयान करने के लिए, और हालांकि जल सतुन मस्तर है और इसी तरह जिल सतुन भी मस्तर है, और मस्तर इसमें जिंस है और जिंस का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है, लेकिन फिर भी उसको आदत या नौ बयान करने के लिए तस्निया लाया गया। ताबा जैदुन जिल सतैनी, ये नौ बयान करने के लिए दो अनवा, और ताबा जैदुन जल सतैनी, जैद अच्छा है दो मरतबा बैठने के एतबार से यहां आदत बयान हो रहा है, तो मस्तर इसमें जिंस है फिर भी आदत बयान करने के लिए उसको तस्निया लाया गया। मालूम हुआ कि तमीज जब जिंस हो तो अनवा के साथ साथ आदत बयान करने के लिए भी उसको तस्निया या जमा ला सकते हैं, हालांकि इन्होंने तो इस्तेसना सिर्फ किसका किया? इल्ला अन तुक्सदल अनवाउ, अनवा का इस्तेसना किया, हालांकि यूं कहना चाहिए था इल्ला अन तुक्सदल अनवाउ वल आदादु, आदत का भी इस्तेसना करना चाहिए था। तो फिर साहिबे जामी ने उसका एक जवाब जिक्र किया था कि भाई उसका यह जवाब दिया जा सकता है कि अनवा से मुराद जिंस के हिस्से हैं, भाई अनवा से मुराद जिंस के हिस्से हैं, और जिंस के तहत जैसे अनवा होती हैं इसी तरह अफराद भी होते हैं। जैसे हैवान है, मंतिक के अंदर आपने पढ़ा है حیوان کیا ہے؟ جنس. اور انسان کیا ہے؟ انسان نوع ہے. جنس کسے کہتے ہیں؟ وَكُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَىٰ كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ، جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. تو حیوان کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے، گائے بیل بکری وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. اور انسان کے بھی افراد بہت زیادہ، گائے بیل کے بھی افراد بہت زیادہ، گھوڑا گدا وغیرہ ان کے بھی افراد بہت زیادہ. تو دیکھو یہ سارے حیوان کے افراد ہیں، لیکن کس قسم کے افراد ہیں؟ کلیات ہیں. انسان بھی کیا ہے؟ کلی. کلی کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین پر صادق ہے. تو انسان بھی حیوان کا فرد لیکن یہ کلی ہے. گائے بیل یہ بھی کیا ہے؟ حیوان کا فرد لیکن یہ بھی کلی ہے. گھوڑا یہ بھی کیا ہے؟ حیوان کا فرد لیکن یہ بھی کلی ہے. گدا یہ بھی حیوان کا فرد لیکن یہ کلی ہے. تو معلوم ہوا جنس کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلیات ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسان کے افراد زید عمر بکر ہیں. جب یہ زید عمر بکر یہ انسان کے افراد ہیں تو یہ حیوان کے بھی افراد ہوئے، کیونکہ یہ سب حیوان ناطق ہیں. معلوم ہوا جنس کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلیات نہیں ہوتے بلکہ جزیات ہوتے ہیں، یعنی کثیرین پر وہ صادق نہیں آتے. کلی تو اسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق ہے، جزی وہ ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے. اب زید صرف زید پر صادق آتا ہے، کسی اور پر نہیں. عمر صرف عمر پر صادق آتا ہے، کسی اور پر نہیں. بکر صرف بکر پر صادق آتا ہے، کسی اور پر نہیں. تو یہ بھی حیوان کے افراد. معلوم ہو حیوان کے کچھ افراد وہ ہیں جو کلیات ہیں، اور اسی طرح حیوان کے کچھ افراد وہ ہیں جو جزیات ہیں. بھائی تو حیوان کے افراد دو قسم کے ہو گئے، اور حیوان کیا ہے؟ جنس. تو جنس کے گویا دو قسم کے افراد ہو گئے، کچھ کلیات ہیں اور کچھ جزیات ہیں. تو یہاں وہ جنس کے حصے مراد لے لو، یعنی جنس کے افراد مراد لے لو. توجہ ہے متن میں کیا آیا؟ الا ان تقصد الانواع. انواع سے کیا مراد لے لو؟ جنس کے حصے. اور حصوں سے کیا مراد ہیں؟ افراد. جنس کے افراد مراد لے لو تو اشکال ختم ہوا، کیونکہ جنس کے افراد مراد لے لیے. تو جنس کے افراد تو دو قسم کے ہیں، کچھ کلیات ہیں کچھ جزیات. کلیات کے اندر وہ انواع آ گئیں، اور وہ جو جزیات ہیں ان کے اندر عدد آ گیا، کہ وہاں عدد کے ساتھ ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ زید عمر بکر دو ہیں، تین ہیں، چار افراد ہیں، کتنے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الا ان تقصد الانواع، اس انواع سے کیا مراد لے لیا جائے؟ جنس کے حصے، یعنی جنس کے افراد مراد لے لیے جائیں. اور جنس کے افراد تو دو قسم کے ہیں، کچھ کلیات ہیں یعنی وہ انواع ہیں، اور کچھ جزیات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ افراد. وہاں عدد بیان ہوگا، تو دونوں داخل ہو گئے. الا ان تقصد الانواع، اسی انواع میں اعداد بھی آ گئے اور خود انواع بھی آ گئیں. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر آگے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز اگر جنس نہ ہو تو پھر اس کو تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں. اگر آپ کا تثنیہ کا ارادہ ہے تو تثنیہ لائیں گے، جمع کا ارادہ ہے تو جمع لائیں گے. مثلا میں کہتا ہوں عندی عیدلن صوبن، میرے پاس ایک گٹھڑی ہے، صوبن باعتبار کپڑے کے، یعنی گٹھڑی میں ایک کپڑا ہے. اور اگر میں بتلانا چاہتا ہوں اس میں دو کپڑے ہیں تو میں یوں کہوں گا عندی عیدلن صوبین، اور اگر زیادہ کپڑے ہیں تو میں یوں کہوں گا عندی عیدلن اسوابن. اور اس کے بعد آگے پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ اسم جو تام ہو رہا ہو تنوین کے ذریعے یا نون تثنیہ کے ذریعے. کتنی صورتیں تھیں اسم کے تام ہونے کی؟ چار صورتیں. یا وہ تام ہوگا تنوین کے ذریعے، یا نون تثنیہ کے ذریعے، یا نون جمع کے ذریعے، یا اضافت کے ذریعے یعنی مضافلے کے ذریعے. تو ان چار صورتوں میں سے جو دو صورتیں ہیں، اگر وہ اسم تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے یا وہ اسم تام ہو رہا ہے نون تثنیہ کے ذریعے، ان میں اضافت بھی جائز ہے تمیز کی طرف. عندی رتلن زیتن، یہ رتلن تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ تنوین کے ذریعے، لہذا اس کی اضافت زید کی طرف کرنا بھی جائز. عندی رتل زیتن بھی کہہ سکتے ہیں. یا اسی طرح عندی منوانی سمنن، یہ منوانی تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ نون تثنیہ کے ذریعے، تو اس کی اضافت بھی جائز ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں عندی منوا سمنن. وجہ یہ کہ ایک تو اس صورت میں تخفیف آ جائے گی، جب آپ نے اضافت کی تو وہ تنوین گر جائے گی یا وہ نون تثنیہ گر جائے گا، تو لفظوں میں بھی تخفیف آ گئی. اور نیز مقصد کیا تھا، تمیز لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ ابہام کو دور کرتی ہے. عندی رتلن کہا तो जात का पता नहीं था, आगे जैतन कहा तो जात का पता लग गया। तो जब आप इजाफत भी करेंगे तो तखफीफ भी आ जाएगी, और नीज ये इजाफत बयानी है तो आगे जात का भी पता चल जाएगा। इजाफत बयानी किसे कहते हैं? जिसमें मुजाफिल बयान करता है और तफसीर करता है, किसकी? मुजाफ की। इंदी रितलु जैतिन, तो ये जैद जो है इसी रितल की तफसीर कर रहा है कि ये रितल किसी और चीज का मुराद नहीं है बल्कि जैद का मुराद है। तो दोनों मकसद हल हो गए, इबहाम भी दूर हो जाएगा और तख़फीफ भी आ जाएगी। तो लिहाजा वो सूरत जिसमें वो इसम ताम हो रहा हो तनवीन के साथ या नूने तस्निया के साथ, उसमें इजाफत भी जायज है। जबकि बाकी दो सूरतें रह गईं, एक नूने जमा वाली और एक इजाफत वाली। इजाफत वाली सूरत इसम ताम हो रहा है इजाफत के साथ, अब इसम की आगे इजाफत नहीं कर सकते क्योंकि एक मुजाफिले जब पहले आ रहा है तो दूसरा मुजाफिले आगे नहीं आ सकता भाई। और नूने जमा के साथ अगर इसम ताम हो रहा हो तब भी इजाफत जायज नहीं, मगर अला सबील किल्लत, निहायत कलील अरबी जुबान में आया है कि इसम जब ताम हो रहा हो नूने जमा के साथ उस वक्त भी उसकी इजाफत तमीज की तरफ कर दी जाती है। जैसे इंदी इशरूना दिरहमन, या इशरूना ताम हो रहा है नूने जमा के जरिए, तो इसकी इजाफत दिरहम की तरफ किल्लत के साथ अरबी जुबान में आई है। और यूं भी कह देते हैं इंदी इशरू दिरहम इन, मेरे पास 20 दिरहम है, लेकिन यह आला सबील किल्लत है यानी कलील ऐसा आया है अरबी जुबान में, आम नहीं। भाई आम क्यों नहीं जायज? वजह यह कि यह जो नूने जमा है इसमें गैर तमीज की तरफ भी कसरत से इजाफत होती रहती है। किसकी तरफ? गैर तमीज की तरफ कसरत से इजाफत होती रहती है। मसलन मुस्लिमो मिस्रिन, मुस्लिमोना किसके साथ ताम हो रहा है? नूने जमा के साथ। और मिस्र ये शहर, कोई शहर कह लो, कोई शहर, मिस्र शहर को भी कहते हैं और एक मुल्क का नाम भी है। अगर मुल्क का नाम हो फिर तो वो गैर मुनसरिफ है, अगर मिस्र से कोई शहर मुराद ले लो तो फिर ये मुनसरिफ है। तो मुसलन मुस्लिमून, और इसकी इजाफत कर देता हूं मैं मिस्र की तरफ, तो क्या बन गया? मुस्लिमो मिस्रिन। तो देखो इसम ताम हो रहा था नूने जमा के साथ और उसकी इजाफत हो गई मिस्र की तरफ, और मिस्र तो तमीज नहीं है, मिसर तो तमीज, तो जो इसम ताम होता है नूने जमा के साथ उसकी इजाफत गैर तमीज की तरफ कसरत से होती रहती है। जैसे और मिसाल इन्होंने जिक्र की थी इशरू का यानी आपके 20, या इशरू रमजान, रमजान का 20वां दिन। तो देखो यहां इजाफत हो रही है गैर तमीज की तरफ, अगर तमीज की तरफ भी इजाफत जायज करार दे दी जाए फिर तो सुनने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो आगे मुजाफिले है ये तमीज है या तमीज नहीं। तो लिहाजा इशरू रमजान का क्या माना? रमजान का 20वां दिन। तो अगर तमीज की तरफ भी इजाफत जायज करार दे दी जाए तो फिर आप अगर आप इशरू रमजान कहते हैं तो सुनने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये आगे इजाफत जिसकी तरफ हो रही है वो तमीज है या तमीज नहीं। रमजान का 20वां दिन मुराद है या 20 दिन रमजान के मुराद हैं ये सुनने वाले को पता नहीं चलेगा। तवज्जो है। और फिर इन्होंने आपको ये भी बतलाया था तमीज की जो पहली किस्म है ये गैर मिकदार से भी इबहाम को दूर करती है। जैसे खातमुन हदीदन, खातमुन के अंदर इबहाम था, आगे हदीदन ने आकर इबहाम को दूर कर दिया कि अंगूठी की जिंस क्या है, किस चीज से बनी हुई है? लोहे से बनी हुई है। लेकिन ये जो तमीज आती है गैर मिकदार से इसमें अक्सर इजाफत कर दिया करते हैं, खातमु हदीदिन कह देते हैं। इसकी क्या वजह है? साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि जो मिकदारें हैं ये इबहाम के अंदर असल हैं, मिकदार चाहती है कि आगे तमीज आकर इससे इबहाम को दूर करे और ये उसको नसब दें, जबकि गैर मिकदार इस दर्जे की नहीं है। जब इस दर्जे की नहीं है तो वो तकाजा नहीं करती कि आगे तमीज को वो नसब दें, तो वहां फिर क्या कर दी जाती है? इजाफत कर दी जाती है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वसानी अयल किस्म सानी मीन तमीज व हुआ मा यरफाउल इबहाम अन दातिम मुकद्दरतिन यरफाउहु अन निस्बतिन। अब तमीज की दूसरी किस्म आ गई भाई, जो जात मुकद्दरा से इबहाम को दूर करती है। जैसे उसकी मिसाल पीछे जिक्र हुई थी तौबा जैदुन नफसन, तौबा जैदुन, जैद अच्छा है, तो ये ताबा की निस्बत हुई जैद की तरफ, लेकिन इस निस्बत में इबहाम था कि जैद किस एतबार से अच्छा है। तो आगे नफसन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया कि जैद अपनी जात के एतबार से अच्छा है। तो ये ताबा जैदुन नफसन, ये इसी दर्जे में है गोया आपने यूं कहा हो ताबा शैउन मनसूबुन इला जैदिन। ताबा जैदुन किस दर्जे में है? ताबा शैउन मनसूबुन इला जैदिन। ताबा शैउन एक चीज अच्छी है, मनसूबुन इला जैदिन, जिसकी निस्बत किसकी तरफ की गई है? जैद की तरफ। एक चीज जो मनसूब है जैद की तरफ वो अच्छी है। भाई वो क्या चीज है? उस चीज की जात में इबहाम था, आगे नफसन ने आकर इबहाम को दूर कर दिया कि वो चीज जो है वो जैद की जात है। भाई तो ये शैउन जो निस्बत के अंदर मुकद्दर था, इससे आगे आने वाली तमीज ने इबहाम को दूर कर दिया। अब उसकी तफसील बयान करने लगे हैं। पहले मतन मतन देखिए, कहते हैं वसानी अन निस्बतिन फी जुमलतिन औ मा ज़ाहा नहु ताबा ज़ैदुन नफ्सन व ज़ैदुन तय्यिबुन अबन। वसानी अन निस्बतिन, तमीज की जो दूसरी किस्म है वो निस्बत से इबहाम को दूर करती है। ताबा ज़ैदुन नफ्सन, ये ताबा की निस्बत है किसकी तरफ? जैद की तरफ। जैद फाइल है ना, फेल का इस्नाद किसकी तरफ होता है? फाइल की। तो ताबा का इस्नाद है, ताबा की निस्बत हो रही है जैद यानी फाइल की तरफ। तो इस निस्बत के अंदर इबहाम था, आगे नफसन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। तो कहते हैं वसानी अन निस्बत, इन तमीज की जो दूसरी किस्म है वो इबहाम को दूर करती है निस्बत से। फी जुमलतिन, वो निस्बत जो कहां पाई जाए? जुमले के अंदर। तवज्जो है मतन पे, जरा नजर रखो। वसानी अन निस्बतिन फी जुमलतिन, निस्बतिन है नकेरा, और नकेरा के बाद फी जुमलतिन जार मजरूर आया, और नकेरा के बाद जार मजरूर आए और किसी से न जुड़ रहा हो तो मैंने आपको बतलाया था वो उस नकेरा के लिए सिफत बनेगा। तो गोया इबारत क्या बन गई? वसानी अन निस्बतिन साबितिन फी जुमलतिन। तवज्जो है, फी जुमलतिन जार मजरूर है और ये जार मजरूर किसके बाद आया? निस्बतिन नकिरा के बाद, और नकिरा के बाद जार मजरूर आए तो उसके लिए क्या बनता है? उमूमन सिफत, और सिफत बराहे रास्त बनेगा या पहले वो मुतअल्लक निकालेंगे? मुतअल्लक निकालेंगे तो साबितिन फी जुमलतिन, फी अन निस्बतिन साबितिन फी जुमलतिन। और दूसरी किस्म जो है तमीज की वो इबहाम को दूर करती है अन निस्बतिन, उस निस्बत से फी जुमलतिन जो किसके अंदर हो? जुमले में हो। औ मा ज़ाहा, याद रखो ज़ाहा, ये जो ज़ाहा है ये है फेल, ये पहली हा फेल की है और दूसरा हा जो है लफ्ज ये जमीर है, वाहिद मुअन्नस गायब की जमीर है। तवज्जो है, ज़ाहा युज़ाही मुज़ाहात का माना है मुशाबे होना। तो मा ज़ाहा जो मुशाबे है, और आगे हा जमीर जो है ये मफूल भी ही है, तो ये जमीर है भाई। फी जुमलतिन, दूसरी किस्म जो है इबहाम को दूर करती है उस निस्बत से फी जुमलतिन जो किसके अंदर हो? जुमले में हो। औ मा ज़ाहा, या वो जो जुमले के मुशाबे है, जो जुमले के मुशाबे है। भाई जुमले के मुशाबे कौन कौन है? इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफसील वगैरह मस्तर है, ये सब क्या है जुम्ले? भाई जैसे देखो, जैसे जराबा के लिए फाइल चाहिए, इसी तरह जुरीबा के लिए नाई फाइल चाहिए। तो जैसे फेल के लिए फाइल या नाई फाइल चाहिए होता है, इसी तरह जो सिफत के सीगे हैं उनके लिए भी हमेशा फाइल या नाई फाइल चाहिए। जारिबुन के लिए हमेशा क्या चाहिए? फाइल। मजरूबुन, इसमें मफूल के लिए हमेशा क्या चाहिए? नाइबुल फाइल चाहिए। सिफत मुशब्बा है करीमुन, इसके लिए भी क्या चाहिए? फाइल चाहिए। इसी तरह इसमें तफजील है अजरबू, इसके लिए भी क्या चाहिए? फाइल चाहिए। और इसी तरह याद रखो मस्तर भी है, जर्ब, जर्ब देखो मस्तर है, और इस जर्ब का वजूद नहीं हो सकता जब तक कोई जर्ब लगाने वाला ना हो। तो मस्तर के लिए भी हमेशा फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए होता है। लेकिन फर्क यह है, तवज्जो से सुनो, फर्क यह है, सिफत के सीगों के लिए फाइल या नाई फाइल का जिक्र जरूरी है। जैसे फेल में था, आपने जराबा या जुरीबा जिक्र किया है तो आगे फाइल या नाई फाइल को जरूर जिक्र करना पड़ेगा। वो आगे इसमें जाहिर होगा या इन्हीं के अंदर जमीर होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता फेल आ जाए और आगे फाइल या नाई फाइल ना आए, वो आगे इसमें जाहिर भी हो सकता है और इसी के अंदर जमीर भी। इसी तरह ये जो सिफत के सिगे हैं इनके लिए भी हमेशा फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए और वो फाइल या नाई फाइल भी जिक्र होना जरूरी है, वो इसमें जाहिर भी हो सकता है और इन्हीं के अंदर जमीर भी हो सकती है, जमीर भी। और मस्तर जो है उसके लिए भी हमेशा फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए, लेकिन मस्तर के फाइल या नाई फाइल का जिक्र होना जरूरी नहीं भाई, फेल के लिए और सिफत के सिगों के लिए फाइल या नाई फाइल का जिक्र जरूरी, और मस्तर के लिए फाइल या नाई फाइल चाहिए तो, लेकिन उसका जिक्र जरूरी नहीं। आप चाहें तो जिक्र करें, आप चाहें तो जिक्र न करें। और नीज मस्तर के अंदर जब फाइल या नाई फाइल को अमूमन जिक्र करते हैं तो मस्तर की उसकी तरफ फिर इजाफत कर दी जाती है आमतौर पर। बात समझ में आ गई? मसलन ज़र्ब है, यह ज़र्ब किसने लगाई? जैद ने। तो ज़र्बुन ज़ैदुन, यह ज़ैदुन को रफा किसने दिया? ज़र्ब ने। मसलन मैं कहता हूं आजबनी ज़र्बुन ज़ैदुन, आजबनी मुझे ताज्जुब में डाला, मुझे ताज्जुब में डाला किस चीज ने? ज़र्बुन, यह है फाइल और ज़र्ब मस्तर है और मस्तर के लिए भी क्या चाहिए? फाइल। तवज्जो है, आजबनी ज़र्बुन ज़ैदुन, आजबनी के लिए आगे ज़र्बुन फाइल बन रहा है और फिर ज़र्बुन खुद मस्तर है जो फाइल है, उसके लिए भी फिर आगे फाइल चाहिए तो आगे वो ज़ैदुन जो है वो फाइल है ज़र्बुन के लिए। तो आजबनी ज़र्बुन ज़ैदुन, ये ज़र्बुन को रफा किसने दिया? आजबनी ने। और ज़ैदुन को रफा किसने दिया? ज़र्बुन मस्तर ने। लेकिन ये जो आगे मस्तर का फाइल होता है या नाई फाइल, उमूमन मस्तर की इसकी तरफ इजाफत कर देते हैं और यूं कहते हैं आजबनी ज़र्बु ज़ैदुन, आजबनी जी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं फेल के मुशाबे, ये सब क्या है? ये यूं कहें ये फेल के मुशाबे हैं, यूं कहें जुमले के मुशाबे हैं भाई। फेल जो है ना अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला बनता है, जबकि ये सिफत के सिगे अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला नहीं बनते बल्कि शिबे जुमला बनते हैं। देखो ज़राबा, ज़राबा इसके अंदर हुआ जमीर, ज़राबा फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला बनेगा, जुमला फेलिया। और ज़ारिबुन इसमें फाइल है, इसके अंदर भी हुआ जमीर है लेकिन ये शिबे जुमला, क्योंकि ज़ारिबुन मुफरद है, ये तो जुमला नहीं, तो इसको शिबे जुमला कहते हैं। मज़रूबुन के अंदर हुआ जमीर नाई फाइल लेकिन ये शिबे जुमला है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं दूसरी किस्म जो है वो इबहाम को दूर करती है उस निस्बत से, फी जुमलतीन जो जुमले के अंदर पाई जाए, औ माजाहा, ये माजाहा का आतफ है जुमलतीन पर, फी जुमलतीन औ फी माजाहा। माजाहा का क्या माना? माजाहा जो मुशाबे है, किसके मुशाबे है? आगे हा जमीर आ रही है, ये पीछे जुमले को राजे है, वो जो जुमले के मुशाबे है। दूसरी किस्म तमीज की इबहाम को दूर करती है उस निस्बत से जो किस में पाई जाए, फी जुमलतिन जुमले में पाई जाए, औ फी माजाहा या वो जो जुमले के मुशाबे है उसके अंदर जो है उससे इबहाम को दूर करती है। इसी तरह आगे देखिए भाई, एक सफे के बाद आ रहा है औ फी इजाफतिन, वो निस्बत जो जुमले में पाई जाए, औ फी माजाहा या वो निस्बत किस में पाई जाए? शिबे जुमला के अंदर, औ फी इजाफतीन या वो निस्बत जो किसमें पाई जाए? इजाफत के अंदर पाई जाए। मैंने अभी आपको बतलाया कि मस्तर जो है उसके बाद फाइल या नाई फाइल जिक्र होता है और मस्तर के उमूमन उसकी तरफ इजाफत कर देते हैं, तो ये जो मस्तर की इजाफत हो रही है अपने फाइल या नाई फाइल की तरफ, इनमें भी निस्बत मौजूद है। मैंने क्या जुमला भी बोला, आजबनी ज़र्बु ज़ैदिन, आजबनी ज़र्बु ज़ैदिन। अब यह ज़ैदिन इस वक्त मुज़ाफ़िल है, मजरूर है, लेकिन माना के एतबार से यह जर्ब का फाइल है भाई। तवज्जो है, मालूम हुआ जर्ब के इसकी तरफ इसनाद हो रहा है। तो ये जो जर्ब ज़ैदीन, ये जो मुजा मुजाफिले के दरमियान निस्बत पाई जा रही है उसमें भी बाज़ोकात इबहाम होता है, तो आगे आने वाली तमीज क्या करती है? इबहाम को दूर कर देती है। बात समझ में आई? क्या बात हुई? तमीज की दूसरी किस्म इबहाम को दूर करती है, किससे? निस्बत से। वो निस्बत कभी किस में होगी? जुमले में होगी। ज़राबा ज़ैदुन, ये ज़राबा का इसनाद किसकी तरफ है? ज़ैद की तरफ। इस निस्बत में कभी इबहाम आएगा, जैसे ताबा ज़ैदुन में आया, और कभी कभार शिबे जुमला के अंदर जो इसनाद होगा उसके अंदर जो है इबहाम आएगा, जैसे ज़ारिबुन, ज़ारिबुन का इसनाद किसकी तरफ है? हुआ जमीर इसके अंदर जो छुपी हुई है, तो ये जो जारिबुन का इस्नाद हुआ जमीर की तरफ हो रहा है, इसके अंदर जो है इबहाम होगा। और ये निस्बत जुमले में है या शिबे जुमला में है? ये शिबे जुमला में है, तो इसके अंदर कभी इबहाम होगा, आगे आने वाली तमीज उससे इबहाम को दूर करेगी। और कभी कभार वो जो मुजाफ की इजाफत हो रही है मुजाफिले की तरफ, तो ये जो दरमियान में इनके निस्बत पाई जा रही है, इस निस्बत में इबहाम होगा। आजबनी ज़र्ब ज़ैदिन, तवज्जो है, आजबनी ज़र्ब ज़ैदिन, ज़र्ब मुजाफ, ज़ैदिन मुजाफुन इलैह, तो मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान निस्बत है, उस निस्बत में इबहाम। लेकिन हर मुजाफ मुजाफिले नहीं मुराद, ये मुजाफ मसदर होना चाहिए, क्या मसदर होना चाहिए, और इसकी आगे इजाफत अपने फाइल या नाई फाइल की तरफ होनी चाहिए। ज़र्बु ज़ैदिन, ज़ैद का पिटाई करना, मालूम हुआ पिटाई करने वाला कौन है, ज़ैद है, तो ये जो ज़र्ब इसकी इजाफत हो रही है ज़ैद की तरफ, इसके अंदर कभी इबहाम होगा तो आगे आने वाली तमीज उस इबहाम को दूर करेगी। हासिल ये कि ये जो इस्नाद हो रहा है फेल का फाइल की तरफ, या शिबे फेल का फाइल की तरफ, या मसदर का अपने फाइल की तरफ, यानी वही मुजाफिले, तो तीनों में देखो इस्नाद किसकी तरफ हो रहा है, फाइल की तरफ, चाहे जुमले वाला इस्नाद हो, चाहे शिबे जुमले वाला इस्नाद हो, चाहे इजाफत वाला, इसमें कभी इबहाम होता है तो आगे आने वाली तमीज उस इबहाम को दूर कर देती है। बात समझ में आ गई? फिर एक दफा तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वसानी अन निस्बतिन फी जुमलतिन, और तमीज की दूसरी किस्म इबहाम को दूर करती है उस निस्बत से, फी जुमलतिन जो किस में पाई जाए, जुमले में, औ माजाहा, या वो निस्बत जो शिबे जुमला के अंदर पाई जाए, औ फी इजाफतिन, या वो निस्बत जो इजाफत में पाया जाए उसके अंदर जो इबहाम होता है उसको तमीज दूर कर देती है। यह है तमीज की किस्म सानी। तमीज की किस्म अव्वल किससे इबहाम को दूर करती थी? मुफरद से। तवज्जो है, तमीज की पहली किस्म मुफरद से इबहाम को दूर करती थी, और वो मुफरद मिकदार भी हो सकता है और गैर मिकदार भी। और तमीज की दूसरी किस्म निस्बत से इबहाम को दूर करती है, और वो निस्बत जुमले में भी हो सकती है, शिबे जुमला में भी, और इजाफत के अंदर भी। बात समझ में आ गई? अब इस सारे को शरा के साथ देखिए भाई। कहते हैं वसानी अल किस्म सानी मिनत तमीजी, दूसरी किस्म जो है तमीज की, वह हुआ मायर फाउल इबहामान दातिम मुकद्दरतिन। भाई पहले आया था जहां तमीज की तारीफ जिक्र की थी साहिब काफिया ने, क्या फरमाया था कि तमीज वो चीज है जो इबहाम मुस्तकिर को दूर करे जाते मजकूरा से या जाते मुकद्दरा से। अब उस दूसरी किस्म की तफसील कर रहे हैं, कहते हैं वसानी, और दूसरी किस्म जो है अल किस्म सानी मिनत तमीज, यानी तमीज की जो दूसरी किस्म है वह हुआ मायर फाउल इबहामान दातिन मुकद्दरतिन, वो जो इबहाम को दूर करती है जाते मुकद्दरा से, वो जो दूसरी किस्म है तमीज की जो किससे इबहाम को दूर करती है, जाते मुकद्दरा से, यर फाउहू अन निस्बतिन। ये यरफाउहू निकाला यहां साहिबे जामी ने, क्या बतलाना चाहते हैं कि ये अन निस्बतिन जार मजरूर है, और ये जार मजरूर ये यरफाउहू से मुतालिक हो रहा है। दूसरी किस्म तमीज की यरफाउहू इबहाम को दूर करती है अन निस्बतिन, किससे, निस्बत से। यहां सवाल पैदा होता है कि ए साहिबे काफिया, आपने पीछे इजमालन एक बात की थी, अब आगे आप उसी की तफसील करना चाहते हैं, लेकिन इजमाल और तफसील एक दूसरे के मुआफिक नहीं। इजमाल में कहा था कि तमीज जो है इबहाम को दूर करती है किससे, जाते मुकद्दरा से, किससे, जाते मुकद्दरा से इबहाम को दूर करती है, और अब आगे कह रहे हैं वसानी अन निस्बतिन, यहां जाते मुकद्दरा नहीं कहा बल्कि क्या कह दिया, निस्बत कह दिया। कहना यूं चाहिए था वसानी अन जातिन मुकद्दरतिन फी निस्बतिन। पीछे क्या जिक्र हुआ था, तमीज या तो जाते मस्कूरा से इबहाम को दूर करेगी या जाते मुकद्दरा से, तो अब आगे वो दूसरी किस्म को कहना चाहिए था वो किस्म जो जाते मुकद्दरा से इबहाम को दूर करे, लेकिन जाते मुकद्दरा कहने के बजाय क्या कह दिया, अन निस्बतिन कह दिया। कहना तो यूं चाहिए था कि तमीज की दूसरी किस्म وہ ذات مقدرہ فی نسبت جو کس میں ہو, اس ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرتی ہے, یوں کہنا چاہیے تھا تاکہ یہ جو تفصیل ہے وہ اس اجمال کے موافق ہو جاتی جو پہلے ذکر ہوا تھا. تو یہاں اجمال اور تفصیل میں بظاہر مطابقت معلوم نہیں ہو رہی, تو صاحب جامی اس کا بھی جواب دیں گے. تو کہتے ہیں کان ظاہر, تو ظاہر یہ ہی تھا کہ ان یقولا, کہ صاحب کافیاں یوں فرماتے, عن ذات مقدرت فی نسبت, عن ذات مقدرت فی نسبت فی جملت, یوں کہنا چاہیے تھا. توجہ ہے, کیا کہنا چاہیے تھا؟ عن ذات مقدرت فی نسبت کہنا چاہیے تھا, لیکن ذات مقدرت کو صاحب کافیہ نے ذکر نہیں فرمایا, اس کی وجہ ذکر کریں گے. کہتے ہیں دیکھیے کیا مثال انہوں نے ذکر کی تھی, طاب زید نفسن. یہ طاب زید نفسن یہ کلام کس درجے میں ہے؟ گویا آپ نے یوں کہا ہے طاب شیء منصوب الى زید, کہ ایک چیز اچھی ہے جو زید کی طرف منصوب ہے, جس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. اس شے کے اندر یہ جو شے ہے یہ مقدر ہے. دیکھو لفظوں میں ذکر نہیں, لفظوں میں تو صرف یہ ذکر ہے طاب زید, یہاں تو شے کا ذکر نہیں. تو یہ نسبت کے اندر جو شے مقدر ہے, اور اس کی ذات میں ابہام تھا کہ وہ چیز کیا ہے, تو آگے نفسن نے آ کر کیا کیا, اس ابہام کو دور کر دیا. اب دیکھو توجہ سے سنو بھائی, صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو شے ان جو ہے اس کے اندر ابہام ہے. توجہ ہے, پھر سنو, طاب زید نفسن یہ کلام کس درجے میں ہے؟ گویا آپ نے کیا کہا ہے, طاب شے ان منصوب الى زید, یہ شے اس کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف. تو شے اور زید کے درمیان نسبت پائی جا رہی ہے, شے کی نسبت ہے نا زید کی طرف. تو شے ہوئی منصوب, جس کی نسبت کی گئی ہے, اور زید ہے منصوب الی, جس کی طرف نسبت کی گئی ہے. تو شے کیا؟ منصوب. زید کیا؟ اور ان دونوں کے درمیان کیا موجود؟ نسبت موجود ہے. تو صاحب جامی بتلائیں گے کہ اس شے میں جب ابہام ہے تو یہ جو شے کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف, اس نسبت میں بھی ابہام آ گیا. بھئی کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں؟ چیز کا ہی نہیں پتا. توجہ ہے, تو جب چیز کا نہیں پتا, چیز کے اندر ابہام ہے, اس شے کے اندر ابہام ہے, تو اس نسبت میں بھی کیا ہے؟ ابہام ہے. اور جب اس نسبت سے ابہام دور ہو جائے گا تو شے سے بھی ابہام دور ہو جائے گا. یوں کہو جب شے میں ابہام ہوگا تو نسبت میں بھی ابہام ہوگا, اور جب نسبت میں ابہام نہیں تو معلوم ہوا شے میں بھی ابہام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا شے کے اندر ابہام تو نسبت میں بھی ابہام, نسبت سے ابہام ختم تو شے سے بھی ابہام ختم. یہ اسی طرح جیسے یوں کہو سورج ہے تو دن بھی ہے, اور اگر میں کہوں دن نہیں ہے تو معلوم ہوا سورج بھی طلوع نہیں ہے اس وقت. یوں کہو سورج ہے ملزوم اور دن کا ہونا ہے لازم, تو جب ملزوم پایا جائے گا لازم ضرور ہوگا, اور جب لازم نہیں ہے تو معلوم ہوا ملزوم بھی نہیں ہے. یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ وہ شے کے اندر جو ابہام ہے وہ ہے ملزوم, اور جب شے میں ابہام ہوگا تو نسبت کے اندر بھی ابہام ہوگا. تو نسبت میں ابہام ہوا لازم, شے کے اندر ابہام ملزوم, اور نسبت میں ابہام لازم. ملزوم ہوگا تو لازم ضرور, ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا. ملزوم جب بھی ہوگا لازم ضرور ہوگا. ذات مقدرہ میں جب بھی ابہام ہوگا تو نسبت کے اندر ضرور ابہام ہوگا, اور جب لازم نہ پایا جائے تو معلوم ہوا ملزوم بھی نہیں ہے, کیونکہ ملزوم ہوتا تو لازم تو ضرور پایا جاتا. تو ملزوم ہوگا تو لازم ضرور ہوگا, اور جب لازم نہیں ہے تو معلوم ہوا ملزوم بھی نہیں. جب نسبت میں ابہام نہیں ہے, نسبت سے ابہام ختم ہو گیا ہے, معلوم ہوا ملزوم سے بھی ابہام ختم ہو گیا ہے. تو بات ایک ہی ہے, چاہے عن نسبت کہہ دیا جائے چاہے عن ذات مقدرت فی نسبت کہہ دیا جائے, ایک ہی بات ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. بھائی دیکھیے بھائی کتاب پر, تو کہتے ہیں کان ظاہر ان یقول عن ذات مقدرت فی نسبت فی جملت, ظاہر یہ تھا کہ صاحب کافیہ یوں فرماتے, عن ذات مقدرت فی نسبت فی جملت, یوں کہنا چاہیے تھا. لیکن لما کان الابہام فی طرف نسبتی, لیکن جب ابہام جو ہے وہ طرف نسبت میں, یستلزم الابہام فیہا, وہ مستلزم ہے ابہام کو فیہا, اس نسبت میں. فیہا کی ہا ضمیر راجہ ہے نسبت کو. توجہ ہے, ادھر دیکھیے طاب زید نفسن یہ کلام کس درجے میں ہے؟ طابہ شیء منصوب الى زید. تو دیکھو شے ہوئی منصوب اور زید کیا ہوا منصوب الے، اور دونوں کے درمیان کیا موجود ہے نسبت. تو گویا اس نسبت کی ایک طرف ہے شے اور اس نسبت کی دوسری طرف کیا ہے زید ہے. تو نسبت کی ایک طرف میں ابہام آئے گا تو نسبت میں بھی کیا آ جائے گا ابہام. تو ایک طرف میں ابہام وہ مستلزم ہے کس چیز کو؟ نسبت میں ابہام کو. یا یوں کہو کہ ایک طرف کے اندر ابہام ہے وہ ہے ملزوم، اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا کہ نسبت میں بھی ابہام آئے گا. توجہ ہے کیا؟ کس کے درمیان نسبت ہے؟ شے اور زید کے درمیان. شے کیا ہے؟ منصوب. اور زید کیا ہے؟ منصوب الے، اور دونوں میں نسبت. تو یہ دو طرفیں ہوئی نسبت کی. تو نسبت کی ایک طرف میں ابہام آئے گا تو نسبت میں بھی ابہام آ جائے گا، اور نسبت سے ابہام دور ہو جائے گا تو اس طرف سے بھی ابہام دور ہو جائے گا. یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن لما کان الابہام فی طرف نسبتی، لیکن جب نسبت کی طرف کے اندر جو ابہام ہے یستلزم الابہام فیہا، وہ مستلزم ہے اس ابہام کو فیہا جو نسبت میں ہو. نسبت کی طرف میں جو ابہام ہے وہ مستلزم ہے کس کو؟ الابہام فیہا. کس کے اندر ابہام ہوگا؟ نسبت میں. نسبت کی طرف میں ابہام یہ مستلزم ہے نسبت میں ابہام کو. ورفعہ عنہا، اور ابہام کو دور کر دینا عنہا کس سے؟ نسبت سے. نسبت سے ابہام کو دور کر دینا یستلزم الرفع عنہ، وہ مستلزم ہے کہ اس طرف نسبت سے بھی ابہام کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو قال، اسی لیے ماتن نے فرمایا عن نسبتن، عن نسبتن کہا مقتصرا علیہ، اس پر اکتفا کرتے ہوئے. حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ نسبت کی طرف میں ابہام ہوگا تو نسبت میں بھی ابہام ہوگا، اور نسبت سے ابہام دور ہو جائے گا تو طرف سے بھی ابہام دور ہو جائے گا. اسی لیے قال عن نسبتن، ماتن نے کیا کہا؟ عن نسبتن کہا، عن ذات مقدرتن فی نسبتن نہیں کہا، مقتصرن علیہ، اس پر اکتفا کرتے ہوئے. اسی پر اکتفا کر لیا کیونکہ بات ایک ہی ہے. تو گویا چاہے عن نسبتن کہہ دیا جائے اور چاہے عن ذات مقدرت فی نسبت کہہ دیا جائے، بات ایک ہی ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ایک ہی بات ہے تو بھی عن ذات مقدرت کہہ دیتے، کہنے میں کیا حرج تھا؟ نہ اشکال ہوتا نہ جواب دینا پڑتا. توجہ ہے؟ آگے صاحب جامی بتلائیں گے کہ بھئی صاحب کافیہ نے یہاں عن ذات مقدرت نہیں کہا بلکہ عن نسبت کہا. دراصل وہ اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمیز کی دو قسمیں ہیں ان کے درمیان تقابل ہے ہی اسی نسبت کی وجہ سے. تمیز کی جو دو قسمیں ہیں، ایک میں ابہام ذات مذکورہ سے ابہام دور کیا جا رہا ہے، ایک میں ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے، ان کے درمیان جو تقابل اور مقابلہ آیا وہ آیا ہی اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ تمیز کی ایک قسم کے اندر نسبت کے اندر ابہام آ جاتا ہے، جبکہ تمیز کی دوسری قسم میں نسبت کے اندر ابہام نہیں ہوتا. نسبت کے اندر ابہام نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہی نسبت کا ہے. اس لیے خاص طور پر یہاں نسبت کے لفظ کو ذکر کیا، ذات مقدرہ کو ذکر نہیں کیا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں تنبیہن، جی یہ دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں، تنبیہن اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے. قال عن نسبت مختصرا علیہا، ماتن نے عن نسبت کہا مختصرا علیہا، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے. تنبیہن، اور اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے. على ان مقابلتا ما فی ھذا القسم، کہ وہ جو اس قسم کے اندر ہے اس کا مقابلہ. للمفرد المذکور فی القسم الاولی، وہ جو قسم اول کے اندر مفرد مذکور ہوا اس کے ساتھ ہے. انما ہی بمجرد نسبت لا غیر، وہ صرف نسبت ہی کی وجہ سے ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں. ان دو قسموں کے اندر جو مقابلہ اور تقابل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ نسبت ہی کی وجہ سے ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں. اس لیے یہاں صرف نسبت ہی کا وہ لفظ لے کر آئے. توجہ ہے؟ ادھر دیکھیے، یہ ہے تمیز کی پہلی قسم. یہ مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے. یہ ہے تمیز کی دوسری قسم, یہ ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرتی ہے. اور ذات مقدرہ سے ابہام جو ہے وہ دراصل نسبت سے ابہام کو دور کریا جاتا ہے. تو دونوں قسموں میں فرق کس چیز کا آیا؟ نسبت کا. ایک قسم کے اندر نسبت کے اندر ابہام ہے, دوسری کے اندر نسبت کے اندر ابہام نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے, یہاں ذرا ترجمہ مشکل ہے. تنبیہن, یہ تنبیہن یہ مفعول لہو ہے جو ماقبل کی علت بیان کرتا ہے کہ ماتن نے عن نسبتن کہا مختصراً علیہ, اس پر اکتفا کرتے ہوئے. کس وجہ سے؟ کیونکہ پیچھے وجہ ذکر کر دی, کیونکہ طرف میں ابہام ہوگا تو نسبت میں بھی ابہام ہوگا, اور نسبت سے ابہام دور ہو جائے گا تو طرف سے بھی ابہام دور ہو جائے گا. اور نیز تنبیہن یہ عن نسبتن اس لیے کہا, تنبیہن اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ علی ان مقابلت ما فی ھذا القسم, کہ وہ جو مقابلے میں ہے اس قسم کے اندر, وہ جو مقابلے میں ہے اس قسم کے اندر, کس کے مقابلے میں ہے؟ للمفرد المذکور فی القسم الاول, قسم اول کے اندر وہ جو مفرد مذکور تھا, یہ والی قسم اس قسم کے مقابل ہے. کس چیز میں؟ انما ہی بمجرد نسبتی, وہ صرف محض نسبت کی وجہ سے ہے, لا غیر, کسی اور وجہ سے نہیں. یعنی دونوں میں جو مقابلہ ہے, تقابل ہے, وہ نسبت کی وجہ سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک میں نسبت میں ابہام ہوگا, ایک میں نسبت میں ابہام نہیں ہوگا. بھائی آگے دیکھیے, فی جملتن ای نسبتن کائنتن فی جملتن, فی جملتن آگے کیا کہا صاحب جامی نے؟ اے نسبتن کائنتن فی جملتن, وہی بات جو میں بیان کر چکا. میں نے کیا بتلایا تھا؟ یہ فی جملتن ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ نسبت کی صفت ہے. اور نسبت کی صفت کیسے بنے گی؟ جار مجرور کے لیے متعلق نکالیں گے, پھر صفت بنے گی. اس لیے کہا اے نسبتن کائنتن فی جملتن, کائنتن کہہ لیں یا ثابتتن کہہ لیں, تو ای نسبتن کائنتن فی جملتن بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ فی جملتن صفت ہے نسبت کی. ای نسبتن کائنتن فی جملتن, یعنی ایسی نسبت جو جملے کے اندر پائی جائے. او ما ظاہا, جی میں نے کیا بتلایا؟ ظاہا کا کیا معنی؟ یہ فعل ہے مشابہت, اس کا معنی. ای ما شابہا, دیکھا مانا کر دیا اس کا. ظاہا کا کیا مانا؟ ما شابہا, جو اس جملے کے مشابہ ہو. بھائی عطف علی جملتن, یہ عطف ہے کس پر؟ جملہ پر. دیکھو پیچھے آیا تھا فی جملتن, فی جملتن او فی ما ظاہا, تو کہتے ہیں عطف علی جملتن, یہ عطف ہے جملے پر. وہو اسم الفاعل, اب بھائی شبہ جملہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جو جملے کے مشابہ ہیں, وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وہو اسم الفاعل, اور وہ اس میں فاعل ہے. نحو مثال کے طور پر الحوض ممتلئ ماء, امتلا یمتلئ کے معنی ہے بھرنا, بھرنا. ممتلئ اس میں فاعل ہے, بھرا ہوا, بھرا ہوا. الحوض ممتلئ, حوض جو ہے ممتلئ بھرا ہوا ہے. ماء باعتبار پانی کے, یہ ماء تمیز ہے بھائی, یہ ماء تمیز ہے. کس سے تمیز ہے؟ یہ شبہ جملہ کے اندر جو اسناد ہے, توجہ ہے یہاں, ترکیب غور سے سمجھ لیں بھائی. الحوض یہ ہے مرفوع مبتدا, ممتلئ مرفوع لفظاً یہ خبر ہے, اور یہ اس میں فاعل ہے, اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے, اور وہ ہوا ضمیر راجع ہے پیچھے حوض کو, کیونکہ یہ ممتلئ خبر ہے, اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے جوڑتے ہیں. تو ممتلئ کا اسناد ہو رہا ہے ہوا ضمیر کی طرف. اس اسناد کے اندر ابہام تھا, اور آگے ماءن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا. اور دیکھو ممتلئ اس میں فاعل ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل, اور یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ شبہ جملہ بن کر یہ خبر بنے گا حوض کے لیے. تو یہاں دو اسناد آ رہے ہیں, ایک ممتلئ ان کا اسناد ہے ہوا کی طرف, اور پھر ممتلئ ان جب اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ بن جائے گا, اب پھر اس کا اسناد ہوگا الحوض کی طرف. تو دو اسناد آ گئے, ایک اسناد ہے جملے میں, ایک اسناد ہے شبہ جملہ میں. شبہ جملہ میں کون سا اسناد؟ کون سا والا؟ وہ جو ممتلئ ان کا ہوا ضمیر کی طرف اسناد ہو رہا ہے, یہ اسناد ہے شبہ جملہ میں. और फिर जो मुमतली उनका इस्नाद हो रहा है अल हौज की तरफ खबर बन रहा है वो कौन सा इस्नाद है? जुमले वाला। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला बन जाएंगे ना, तवज्जो है। मुमतली उन अपने फाइल हुआ से मिलकर ये शिबे जुमला बनेगा, तो इस शिबे जुमला में भी एक इस्नाद, और फिर मुमतली उनका इस्नाद अल हौज की तरफ होगा तो ये जुमला बनेगा, तो ये जुमले वाला इस्नाद आ जाएगा। तो यहां इबहाम किस इस्नाद में है? मुमतली उनके अंदर जो हुआ जमीर की तरफ इस्नाद, यानी जो शिबे जुमला में इस्नाद है उसके अंदर इबहाम था, और मान ने आकर उसको इबहाम को दूर कर दिया। अल हौज मुमतली उन, वो हौज भरा हुआ है भाई, किस चीज से भरा हुआ है? इबहाम था, आगे मान ने उस इबहाम को दूर कर दिया। तो ये मान तमीज है जो इबहाम को दूर कर रही है उस इस्नाद से, वो इस्नाद जो किस में है? शिबे जुमला में है भाई। तो ये शिबे जुमला की एक मिसाल। अब इस्मुल मफ़ऊल, या वो शिबे जुमला क्या होगा? इसमें मफ़ऊल होगा नहवु अल अर्ज़ु मुफज्जरतुन उयूनन। फज्जरा युफज्जिरु तफजीर का माना है बहा देना किसी चीज को, मसना पानी वगैरह जमीन पर बहा देते हैं, तो ये है तफजीर भाई। तो अल अर्ज़ु मुफज्जरतुन, ये मुफज्जरतुन इसमें मफ़ऊल है, और इसमें मफ़ऊल के लिए हमेशा क्या चाहिए? नायबुल फाइल। तो यहां पर भी गौर से देखो, अल अर्ज़ु यह है मुब्तदा, मुफज्जरतुन इसमें मफ़ऊल है, इसके अंदर हिया जमीर मरफू महल्लन इसका नायबुल फाइल है, और यह जमीर किसको राजे? ये अल अर्ज मुब्तदा को राजे है, क्योंकि ये खबर है और खबर को मुब्तदा से जोड़ते हैं, और अल अर्ज ये मुअन्नस सिमाई है, इसीलिए मुफज्जरतुन ये मुअन्नस लेकर आए इसमें मफूल भाई। तो ये मुफज्जरतुन का इस्नाद है, हिया जमीर जो इसका नायबुल फाइल है, और ये इस इस्नाद के अंदर इबहाम था, आगे उयूनन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। अल अर्जु मुफज्जरतुन, जमीन को बहा दिया गया है, उयूनन बएतबार चश्मों के, उयूनन जमा है ऐन की, और ऐन पानी के चश्मे को भी कहते हैं भाई। तो जमीन को, अल अर्जु मुफज्जरतुन, जमीन को बहा दिया गया है, इबहाम था कि भाई किस एतबार से बहा दिया गया है, आगे उयूनन ने आकर इबहाम को दूर कर दिया कि चश्मों के एतबार से बहा दिया गया है, यानी यूं कहो जमीन पर चश्मे बहा दिए गए हैं, जमीन पर चश्मे बहा दिए गए हैं। तो उयूनन ये तमीज है, ये इबहाम को दूर कर रही है निस्बत से, कौन सी निस्बत? जो किसके दरमियान है? जो मुफज्जरतुन की हिया जमीर की तरफ इस्नाद है, यानी शिबे जुमला में जो इस्नाद है, और फिर दोबारा जब ये मुफज्जरतुन अपने नायबुल फाइल से मिलकर शिबे जुमला बनेगा, फिर इसका इस्नाद किसकी तरफ होगा? अल अर्ज की तरफ। तो ये जुमले वाला इस्नाद है, तो यहां दो इस्नाद आ गए, एक इस्नाद शिबे जुमले वाला और एक जुमले वाला। इबहाम किस में है? शिबे जुमले वाले इस्नाद में इबहाम था, उयूनन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। अब इस सिफतुल मुशब्बहतु, या वो शिबे जुमला जो है सिफत मुशब्बा होगा, नहु जैदुन हसनुन वजहन। जैदुन है मुब्तदा, हसनुन सिफत मुशब्बा है, और सिफत मुशब्बा के लिए भी फाइल चाहिए, तो इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल जो किसको राजे है? जैद को, क्योंकि ये खबर है, और खबर को किससे जोड़ते हैं? मुब्तदा से। तो हसनुन का इस्नाद हुआ जमीर की तरफ है, और ये इस्नाद शिबे जुमला के अंदर पाया जा रहा है। फिर ये हसनुन अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये खबर बनेगा जैद के लिए, और ये जुमले वाला इस्नाद है, और यहां इबहाम किसके अंदर है? शिबे जुमला के अंदर जो इस्नाद है उसमें इबहाम है, और आगे वजहन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। भाई देखिए, जैद और हसनुन, जैद अच्छा है भाई, किस एतबार से अच्छा है? अखलाक के एतबार से, आदात के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, इलम के एतबार से, किस एतबार से ज्यादा अच्छा है? आगे वजहन ने इबहाम तो दूर कर दिया कि चेहरे के एतबार से अच्छा है, यानी जैद हसीन है। माना समझ में आ गया? तो ये वजहन ने इबहाम को दूर किया उस निस्बत से जो शिबे जुमला के अंदर है भाई। अब इस मुतफजीली, या वो शिबे जुमला इसमें तफजील होगा, जैसे जैदुन अफजलु अबन, ये अफजल इसमें तफजील है, और इसमें तफजील के लिए भी क्या चाहिए? फाइल चाहिए। तो अफजलु के अंदर हुआ जमीर, और अफजलु का इस्नाद है उस हुआ जमीर की तरफ, और उस इस्नाद के अंदर इबहाम था, आगे अबन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। और याद रखो, ये अफजल इसमें तफजील है, और इसमें तफजील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, या अलिफ्लाम के साथ होगा, या इजाफत के साथ, या मीन के साथ। यहां अफजल अलिफ्लाम भी नहीं है, मीन भी यहां नहीं है और इजाफत यहां आगे कोई मुजाफिले भी नहीं आ रहा, तो फिर ये कौन सा तरीका है? जवाब गुजर चुका कि यहां यहां मीन मुकद्दर है, जैसे अल्लाह अकबर असल में क्या है, अल्लाह अकबर मीन कुल्ली शाइन, तो यहां मीन के साथ ये इस्तेमाल हो रहा है और वो मुकद्दर है भाई। तो जैद उन अफजल, जैद अफजल है, अफजल है भाई, किस एतबार से जैद अफजल है? इलम के एतबार से अफजल है, अपनी जात के एतबार से अफजल है। आगे अबन ने आकर इबहाम दूर कर दिया कि जैद अफजल है बाप के एतबार से, जैद अफजल है बाप के एतबार से अफजल है। इसके दो माना हो सकते हैं, या तो माना यह है कि जैद का बाप अच्छा है, जैद अफजल है बाप के एतबार से, यानी जैद का बाप अफजल है, यानी उसके जैद के साथ अच्छा सलूक करता है, ख्याल रखता है, या जैद खुद बाप है, जैद अफजल है बाप होने के एतबार से, यानी जैद अपने बच्चों का ख्याल रखता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अविल मसदरु, या वो शिबे जुमला मस्तर होगा, नहु मिसाल के तौर पर, आजबनी तीबुहु अबन, आजबनी मुझे ताज्जुब में डाला, तीबुहु उसका अच्छा होना, अबन बैतेबार बाप के, तीब मस्तर है, ताब यतीबु तीबन, ये मस्तर है और इसकी इजाफत हो रही है हा जमीर की तरफ और ये इसका फाइल है, उसका अच्छा होना, वो अच्छा कौन है, वो शख्स है, तो तुईब की इजाफत हो रही है अपने फाइल की तरफ, तो इसके अंदर इबहाम था, तो आगे अबन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। तवज्जो है, यहां दो निस्बतें हैं, आजबनी तीबुहु, एक आजबनी का इस्नाद है तीबुहु फाइल की तरफ, उसमें नहीं इबहाम बल्कि तीबुहु तीब के जो मुजा मुजाफिले के दरमियान जो इस्नाद है उसके अंदर इबहाम था, अबन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। उसका अच्छा होना, तीबुहु उसका अच्छा होना, भाई किस एतबार से उसका अच्छा होना है? बाप के एतबार से, इलम के एतबार से, जात के एतबार से, किस एतबार से वो अच्छा है? तो अबन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। और यहां एक और कीमती बात भी याद रखना, इधर देखिए, तमीज की दूसरी किस्म इबहाम को दूर करती है निस्बत से। वो निस्बत कभी किस में होगी? कभी जुमले में, कभी शिबे जुमला में, और कभी इजाफत में। और ये मिसालें किसकी जिक्र हो रही हैं? शिबे जुमला की मिसालें जिक्र हो रही हैं। और शिबे जुमला के अंदर तीबुहूत मुजा मुजाफिल है, ये तो इजाफत के दरमियान निस्बत बयान कर दी साहिब जामी ने। तीबुहू मुजा मुजाफिले है ना, तो ये मिसाल किसकी जिक्र कर रहे हैं? शिबे जुमला की। और जिक्र किसको कर दिया? इजाफत को जिक्र कर दिया। तो ये तो मिसाल जो है मुमस्सल लहू के मुताबिक नहीं। तो जवाब याद रखना कि यहां तीबुहु की जो इजाफत है हा जमीर की तरफ, उसमें दो हैसियतें हैं। एक लफ्जी हैसियत है, लफ्जों के एतबार से तीब मुजाफ, हा जमीर मुजाफोन इले, तो लफ्जों के एतबार से देखा जाए तो इजाफत के अंदर इबहाम है, और माना के एतबार से देखा जाए तो तीब मस्तर है और हा जमीर उसका फाइल है, और मस्तर का इस्नाद हो अपने फाइल की तरफ, उसमें क्या है? इबहाम। तो ये दोनों की मिसाल बन सकता है। तो साहिबे जामी लाए ही ये बतलाने के लिए हैं कि जो इजाफत के अंदर इस्नाद है इसके अंदर दो हैसियतें मलहूज हो सकती हैं। बात समझ में आ गई। तो आजबनी तीबुहु अबन के, मुझे ताज्जुब में डाला उसके अच्छा होने ने बैतबार बाप के, वकादा कुल्लु मा फीहि मानल फेली, और इसी तरह हर वो चीज जिसके अंदर फेल वाला माना हो, हर वो चीज जिसमें फेल वाला माना हो, नहु हसबू का जैदुन रजुलन, जैसे हसबू का काफी है आपके लिए जैदुन जैद रजुलन बैतेबार मर्द के, आपके लिए जैद काफी है बैतेबार मर्द के, यानी जैद जैसा बहादुर आदमी आपका दोस्त है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो हसबू का जैदुन रजुलन, अब देखो मिसालें जिक्र कर रहे हैं शिबे जुमला की, और यहां पर हसबू का जैदुन रजुलन कहते हैं इसके अंदर फेल वाला माना पाया जा रहा है। हसबू का बमान है यकफी का, कफा यकफी का माना काफी होना, यकफी का काफी है आपके लिए जैदुन जैद रजुलन बैतेबार मर्द के। अब इधर देखिए, मुझे बताइए, यकफी का जैदुन रजुलन किसके अंदर इबहाम है? यकफी का जैदुन रजुलन कौन सी निस्बत में इबहाम है, यकफी की निस्बत हो रही है किसकी तरफ, जैद की तरफ, तवज्जो है। तो यहां यकफी फेल की निस्बत जो जैद की तरफ हो रही है कि जैद काफी है, भाई किस एतबार से जैद काफी है, रजुलन बेतबार मर्द के, यानी वो बहादुर आदमी आपका दोस्त है, किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं। तो ये जो यकफी की निस्बत है काफ की तरफ न कहना, काफ तो मफूल भी ही है भाई, मफूल भी ही है, बल्कि यहां निस्बत किसकी तरफ है, जैद यानी फाइल की तरफ। तो यहां लफ्जों में तो फेल नहीं लेकिन माना के एतबार से फेल है भाई, और उस निस्बत के अंदर इबहाम था, तो उससे आगे रजुलन ने इबहाम को दूर कर दिया। तो कहते हैं वकदा कुल्लु मा फीही मानल फेल, और इसी तरह हर वो चीज जिसके अंदर फेल वाला माना हो वो भी यानी शिबे फेल की मिसाल है। नहु हसबुका जैदुन रजुलन, काफी है आपके लिए जैद बैतबार मर्द के। बात समझ में आ गई, हासिल कलाम क्या हुआ कि वो निस्बत कभी जुमला में होगी और कभी शिबे जुमला में, जिसके अंदर इबहाम है और आगे तमीज आकर इस इबहाम को दूर करेगी। और शिबे जुमला से क्या मुराद है, इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफजील है, मस्दर है, और इसी तरह हर वो चीज जिसके अंदर फेल वाला माना पाया जाए। आगे देखिए भाई, पहले मतन मतन, नहु ताब ज़ैदुन नफ्सन व ज़ैदुन तय्यिबुन अबन व उबुवतन व दारन व इल्मन औ फी इज़ाफतिन मिस्लु युजिबुनी तीबुहु अबन व उबुवतन व दारन व इल्मन वलिल्लाहि दर्रुहु फारिसन। ये सारा मतन मिल गया भाई। अच्छा देखिए भाई, अब इस सारे मतन को कहते हैं नहु ताब ज़ैदुन नफ्सन, जैद अच्छा है, नफ्सन बेतबार जात के, यानी जैद अपनी जात के एतबार से अच्छा है। तो यहां इबहाम था निस्बत के अंदर, और कौन सी निस्बत है, जुमले के अंदर है, ताबा फेल है और जैदुन फाइल है और ये जुमला है, और जुमले के अंदर जो निस्बत थी उसमें इबहाम था, नफ्सन ने आकर उसी इबहाम को दूर कर दिया। व जैदुन तय्यिबुन अबन, ये मिसाल है शिबे जुमला की, तय्यिब सिफत मुशब्बा है और इसके अंदर हुआ जमीर फाइल है, तो तय्यिबुन का इस्नाद उस हुआ जमीर की तरफ है और उसमें इबहाम था, आगे अबन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। जैदुन तय्यिबुन, जैद अच्छा है बाप के एतबार से, इसके भी वही दो तर्जमे हो सकते हैं, या तो माना यह है, माना यह है जैदुन तय्यिबुन अबन, जैद अच्छा है बाप के एतबार से, यानी जैद का बाप अच्छा है, जैद के साथ अच्छा सुलूक करता है, उसका ख्याल रखता है, या माना यह है कि जैद खुद बाप है, बाप होने के एतबार से वो अच्छा है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है। तो कहते हैं जैदुन तय्यिबुन अबन, जैद अच्छा है बाप के एतबार से, व उबुवतन व दारन व इल्मन। अच्छा भाई भाई देखिए, यहां साहिबे काफिया बहुत सारी मिसालें लेकर आए। देखो यहां तमीज नफसन भी आ रही है, यहां तमीज अबन भी आ रही है, इसी तरह आगे तमीज है उबुवतन, उबुवत ये मस्तर है, माना है बाप होना, व दारन दार घर को कहते हैं, ये भी तमीज है, इल्मन ये इल्म ये भी मस्तर है भाई। तो कितनी तमीजें आ गई, नफसन अबन उबुवतन दारन इल्मन, पांच किस्म की तमीजें ले आए, और इन पांच में से हर एक को ताबा जैदुन के साथ भी जोड़ो और जैदुन तय्यिबुन के साथ भी जोड़ो, तो क्या बन गया, ताबा जैदुन नफसन, ताबा जैदुन अबन, ताबा जैदुन उबुवतन, ताबा जैदुन दारन, ताबा जैदुन इल्मन, और इसी तरह जैदुन तय्यिबुन नफसन, जैदुन तय्यिबुन अबन, जैदुन तय्यिबुन उबुवतन, जैदुन तय्यिबुन दारन और जैदुन तय्यिबुन इल्मन। तो ये पांच और पांच दस मिसालें हो गई, और इसी तरह आगे आ रहा है औफी इजाफतिन, उसकी भी इसी तरह मिसालें हैं, युजिबुनी तीबुहु अबं व उबुवतं व दारं व इल्मन, और इसी तरह आगे आ रहा है वलिल्लाही दर्रुहु फारिसन। तो ये साहिबे काफिया 15-16 मिसालें उन्होंने जिक्र कर दी, हालांकि साहिबे काफिया के पास तो अल्फाज कम होते हैं, उनकी कोशिश होती है कम से कम लफ्जों में लंबी से लंबी बात कर जाएं, वो सिर्फ इशारा करते हुए निकल जाते हैं, बाकी सारी तकरीर उस्ताद को करना पड़ती है। तो फिर यहां साहिबे काफिया इतनी सारी मिसालें क्यों लाए, क्या वजह है, 15-16 मिसालें उन्होंने जिक्र कर दी। تو وجہ یہ کہ دراصل صاحب کافیہ تمیز کی مختلف اقسام آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، تمیز کی مختلف اقسام اور انواع آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز کبھی عین ہوگی اور کبھی عرض ہوگی، اسی طرح کبھی تمیز اضافی ہوگی کبھی غیر اضافی ہوگی، اسی طرح کبھی تمیز جو ہے منتصب عنہ سے ہوگی کبھی متعلق منتصب عنہ سے اور کبھی دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا، تو مختلف انواع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. تفصیل یاد رکھو، تفصیل یہ کہ چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے جسے آپ منطق میں جوہر کہتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں خارج میں، وہ غیر کی محتاج ہیں، وہ غیر ہے تو ان کا وجود ہے، وہ غیر نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں، اور اس کو عرض کہتے ہیں. تو چیزیں کتنی قسم پر؟ دو، ایک جوہر اور ایک عرض. جوہر جیسے دیکھو درخت، درخت کا اپنا ایک الگ وجود ہے، پہاڑ، پہاڑ کا اپنا ایک الگ وجود ہے، یہ کتاب ہے، کتاب کا اپنا ایک الگ وجود ہے، زید ہے، زید کا اپنا ایک الگ وجود ہے، عمر ہے، عمر کا اپنا ایک الگ وجود. تو یہ سب جوہر ہیں، یہ یوں کہو یہ عین ہیں. یہ کیا ہیں؟ عین. جس چیز کا اپنا الگ وجود ہے وہ ہے عین بھائی، عین یا نون، عین. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، وہ غیر کی صفت بنتی ہیں، ان کے لیے وہ غیر چاہیے، وہ غیر ہے تو ان کا وجود ہے، وہ غیر نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں. جیسے سخاوت، مثلا سخاوت زید کی صفت ہے، زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے، زید نہیں تو زید کی سخاوت بھی نہیں ہے. یا جیسے شجاعت، بہادری بھائی، زید ہے تو زید کی بہادری بھی ہے، زید نہیں تو زید کی بہادری بھی نہیں ہے، بہادری کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، سخاوت کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. یہ ہمیشہ صفت ہوتی ہیں اور ان کے لیے موصوف چاہیے، موصوف ہے تو ان کا وجود بھی ہے، موصوف نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں. اسی طرح یہ چیزوں کے جو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، یاد رکھو یہ رنگ، یہ بھی صفت ہیں، یہ چیزیں ہیں تو یہ رنگ بھی ہیں، یہ چیزیں نہیں تو یہ رنگ بھی نہیں. جیسے سفیدی، جیسے یہ کتاب کے صفحات سفید ہیں، یہ صفحات ہیں تو یہ سفیدی بھی ہے، اور اسی طرح یہ دیوار پر سفیدی ہے، یہ دیوار ہے تو یہ سفیدی ہے. اسی طرح جیسے آپ کے کپڑے سفید ہیں، یہ کپڑے ہیں تو سفیدی ہے، کپڑے نہیں تو یہ سفیدی بھی نہیں ہے. تو یہ رنگ ہمیشہ چیزوں کی صفت ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ نہیں بھائی، سفیدی تو ہمیں الگ بھی نظر آتی ہے، ہم بازار سے چونا خرید کر لاتے ہیں تو دیکھو یہ تو سفیدی ہے، بالکل الگ ہے، اس کا اپنا الگ وجود. تو نہیں بھائی، یاد رکھو سفیدی ہمیشہ، یہ رنگ ہمیشہ صفت ہوتے ہیں. یہ چونا جو ہے یہ خاص قسم کی ایک مٹی ہے، اور اس مٹی کے ہر ہر ذرے کی صفت سفیدی ہے، توجہ ہے؟ تو یہ کوئی سفیدی کا الگ وجود نہیں. آپ اس کا تجربہ آرام سے کر سکتے ہیں، ایک ڈرم چونے کا آپ تیار کریں پانی ملا کر، اس میں تھوڑا سا نیلا رنگ آپ ملا دیں، سارے ڈبے کا رنگ بدل جائے گا. بھئی اگر سفیدی تھی تو سفیدی کدھر چلی گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ صرف اس مٹی کی صفت تھی، وہ بدل گئی. اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ بازار میں خالص سفیدی کا ڈبا مل جاتا ہے، یاد رکھو وہ بھی خالص سفیدی نہیں ہے، وہ بھی وہ ایک کیمیکل ہے، اس کیمیکل کے ہر ہر ذرے کی صفت کیا ہے؟ سفیدی ہے. چنانچہ آپ اس میں تھوڑا سا نیلا رنگ ملا دیں، آپ دیکھیں گے پورے ڈبے کا رنگ بدل گیا. بھئی اگر وہ سفیدی کا اپنا الگ وجود تھا وہ کہاں چلی گئی بھئی؟ یا کپڑوں کے دیکھیں، کپڑے سفید رنگ کے ہوتے ہیں، وہ جو رنگ ریز ہوتا ہے وہ ان کو کبھی ایک رنگ دیتا ہے کبھی دوسرا رنگ دیتا ہے، تو سفید کپڑا تھا وہ نیلے پانی میں اس کو ڈبوتا ہے تو سارا کپڑا نیلا ہو جاتا ہے. اگر سفیدی کا اپنا الگ وجود تھا تو وہ کدھر گئی بھائی؟ اس کو علیحدہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو رنگ نظر آتے ہیں یہ بھی چیزوں کی صفت ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے، اس کو جوہر کہتے ہیں، یا یوں کہیں عین کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں، اس کو صفت کہتے ہیں، یا یوں کہیں عرض کہتے ہیں. عرض، بات سمجھ میں آگے؟ را پر فتحہ پڑھیں، عرض بھائی، عرض. تو چیزیں گویا دو قسم کی ہو گئیں، کچھ ہیں عین اور کچھ ہیں عرض. اسی طرح پھر یاد رکھو یہ عین اور عرض یا تو یہ اضافی ہوں گے یا غیر اضافی. اضافی اضافت سے ہے، اضافی یوں نسبت والی. اضافت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نسبت کرنا. غلام زیدین، یہ غلام مضاف ہے، زیدین مضافون الیہ، غلام کی میں نے اضافت کر دی، نسبت کر دی کس کی طرف؟ زید کی طرف، کہ یہ زید کا غلام ہے. तो इजाफत का क्या माना है? निस्बत करना। तो कुछ चीजें वो है वो इजाफी हैं, कुछ चीजें गैर इजाफी होती हैं। इजाफी वो है जिसका समझना गैर के समझने पर मौकूफ है। मसलन ये किताब, ये गैर इजाफी है, किताब को समझने के लिए किसी और चीज को समझने की जरूरत नहीं। कलम गैर इजाफी है, पहाड़ दरिया वगैरह ये सब क्या है? गैर इजाफी। लेकिन कुछ चीजें हैं उनका समझना दूसरी चीज के समझने पर मौकूफ है। मसलन खावंद किसे कहते हैं? जिसकी बीवी हो। बीवी किसे कहते हैं? जिसका खावंद हो। तो खावंद हुआ इजाफी। खावंद तभी समझ में आएगा जब आपको बीवी समझ में आ जाए, और बीवी भी है इजाफी। बीवी तभी आपको समझ में आएगी जब आपको खावंद समझ में आएगा। तो खावंद किसे कहते हैं? जिसकी बीवी हो। बात समझ? तो खावंद का माना समझ में ही नहीं आ सकता जब तक बीवी का माना समझ में नहीं आएगा, और बीवी का माना समझ में ही नहीं आ सकता जब तक खावंद का माना समझ में नहीं आएगा। तो दोनों का समझना एक दूसरे पर मौकूफ हो गया। इसी तरह उस्ताद और शागिर्द। उस्ताद किसे कहते हैं? जिसका शागिर्द हो। शागिर्द किसे कहते हैं? जिसका उस्ताद हो। तो यह भी इजाफी है, एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ है। इसी तरह मालिक और ममलूक। मालिक किसे कहते हैं? जिसका कोई ममलूक हो। ममलूक किसे कहते हैं? जिसका कोई मालिक हो। तो ये सब इजाफी हैं। आप किसी को बतलाना चाहते हैं खावंद किसे कहते हैं? बीवी के जिक्र के बगैर खावंद आप उसे समझा ही नहीं सकते, खावंद किसे कहते हैं? या इसी तरह देखो बाप और औलाद। बाप किसे कहते हैं? जिसकी औलाद हो। औलाद किसे कहते हैं? जिसका बाप हो। भाई देखो, आप किसी को बतलाना चाहते हैं खावंद किसे कहते हैं, तो जब तक बीवी का जिक्र नहीं करेंगे खावंद आप समझा ही नहीं सकते। और बीवी के बारे में बतलाना चाहते हैं, जब तक खावन साथ जिक्र नहीं करेंगे बीवी का माना किसी को आप समझा ही नहीं सकते। तो ये चीजें हैं इजाफी, जिनमें एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ है, जबकि बाकी चीजें ऐसी नहीं। किताब है, किताब का समझना किसी दूसरी चीज पर मौकूफ नहीं। पहाड़ का समझना किसी दूसरी चीज पर मौकूफ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो चीजें गोया कितनी किस्म की हो गई? दो किस्म पर, कोई इजाफी और कोई गैर इजाफी। तो तमीज याद रखो, कभी ऐन होगी और कभी आरस होगी। फिर दोनों के अंदर वो ऐन भी इजाफी भी हो सकती है और गैर इजाफी भी हो सकती है। इसी तरह वो आरस है अगर, तो आरस भी इजाफी भी हो सकती है और गैर इजाफी भी। इसी तरह फिर याद रखना कि तमीज जो है कभी वो मुंतसब अनहु से होगी, कभी मुतअल्लिक मुंतसब अनहु से होगी, और कभी दोनों से होने का एहतमाल होगा। ये लफ्ज आगे ये आ भी रहा है किताब के अंदर, طاب زيد نفسا مثال للجملة والتمييز فيه خاص بالمنتصب عنه منتصب عنه صاد کے ساتھ ہے منتصب جس کو نصب دیا گیا عنه یاد رکھو یہ عن کبھی عربی زبان میں علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے منتصب عنه اي منتصب بسببه جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا طاب زید ابن یہ ابن تمیز ہے اس کو نصب دیا گیا کس کی وجہ سے نصب دیا گیا نسبت کی وجہ سے کیونکہ نسبت میں ابہام تھا توجہ ہے پھر سنو منتصب عنہ کا معنی میں بیان کر رہا ہوں منتصب عنہ کا کیا معنی وہ جس کی وجہ سے تمیز کو نصب دیا گیا اور طاب زید نفسن یہ نفسن کو نصب دیا گیا کس کی وجہ سے نسبت کی وجہ سے تو حقیقت میں منتصب عنہ نسبت ہے اس نسبت میں ابہام تھا آگے نفسن نے آ کر ابہام کو دور کر دیا لیکن مجازن جو فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے اس کو منتصب عنہ کہتے ہیں کیونکہ فاعل یا نائب فاعل ہے تو نسبت بھی ہے فاعل یا نائب فاعل نہ ہو تو نسبت بھی نہیں ہے طاب زید نفسن یہ طاب کا جو اسناد ہے زید کی طرف اس میں ابہام ہے لیکن یہ اسناد آیا کیوں کس کی وجہ سے آیا زید کی وجہ سے جو فاعل ہے زید نہ ہوتا تو اسناد کہاں سے ہوتا توجہ ہے تو منتصب عنہ حقیقت میں کیا ہے نسبت ہے لیکن مجازن کس کو کہہ دیتے ہیں وہ جو فاعل یا نائب الفاعل ہے اس کو منتصب عنہ کہہ دیتے ہیں توجہ ہے تو تمیز جو ہے کبھی وہ منتصب عنہ سے ہوگی کبھی متعلق منتصب عنہ سے ہوگی اور کبھی دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا یعنی یوں کہو کہ تمیز کا کبھی اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکے گا تمیز کا اطلاق توجہ سے سمجھ لو مشکل مقام ہے کہ تمیز کا اطلاق کبھی صرف منتصب عنہ پر ہو سکے گا कभी मुतअल्लिक मुंतसब अनहु पर हो सकेगा सिर्फ, और कभी दोनों पर उसका इतलाक हो सकेगा। जैसे देखो मिसाल से वजाहत होगी, ताबा जैदुन नफसन, ताबा जैदुन नफसन, इसमें मुंतसब अनहु कौन है? हकीकत में निस्बत है, लेकिन आप निस्बत को ना कहें, किसको कहें? जैद, यानी वो जो फाइल या नाई फाइल है। तो ताबा जैदुन नफसन, मुंतसब अनहु कौन? जैद है। तो कभी कभार ये तमीज का इतलाक सिर्फ मुंतसब अनहु पर हो सकेगा, उसके मुतालिक पर नहीं। जैद अच्छा है, नफसन जात के एतबार से। तो मुझे बताइए, ये जैद की जात जैद से अलग कोई चीज है या जैद ही है? जैद ही है। तो मालूम हुआ ताबा जैदुन नफसन, ये नफ्स का इतलाक सिर्फ मुंतसब अनहु पर हो सकता है, उसके मुतालिक पर नहीं हो सकता, क्योंकि जैद की जात वो जैद ही है, जैद से कोई अलग चीज नहीं। लेकिन कभी कभार वो तमीज अलग होगी, जैसे देखो ताबा जैदुन दारन, ताबा जैदुन, जैद अच्छा है, दारन बैतेबार घर के। अब मुझे बताइए ये दार का इतलाक जैद पर हो सकता है? जैद दार है, जैद घर है? नहीं, जैद का दार का इतलाक जैद पर नहीं हो सकता। हां जैद क्या मुतालिक, यानी जैद का जो घर है वो है दार भाई, और वो दार किससे मुतालिक है? किसका घर है? जैद का घर है वो, तवज्जो है। तो यहां पर देखो ताबा जैदुन दारन, ये दार का ये जो तमीज है इसका इतलाक मुंतसब अनहु पर नहीं हो सकता, सिर्फ मुतालिक मुंतसब अनहु पर जो है इसका इतलाक हो सकता है, तवज्जो है। और कभी दोनों पर उसका इतलाक हो सकेगा, जैसे ताबा जैदुन अबन, ताबा जैदुन अबन, ये अब ये जो बाप है इसका इतलाक मुंतसब अनहु पर भी हो सकता है। जैसे देखो जैदुन अबुन, जैद बाप है, देखो बाप का हमल मैंने जैद पर कर दिया या नहीं
कर
तो जैद, और जैद के मुतालिक पर भी हो सकता है कि जो जैद का बाप है जो जैद से अलग है, दोनों एहतमाल है। अब का इतलाक जैद पर भी हो सकता है और जैद के मुतालिक यानी जैद के बाप पर भी हो सकता है। तो ताबा जैदुन अबन, ये अबन ये ऐसी तमीज है जिसका इतलाक मुंतसब अनहु पर भी हो सकता है और मुतालिके मुंतसब अनहु पर भी। अगर जैद पर इतलाक हो फिर क्या माना? ताबा जैदुन अबन, जैद अच्छा है बाप के इतबार से, यानी जैद अच्छा बाप है, जैद अच्छा बाप है, अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है। और अगर ये अब का इतलाक मुतालिक मुंतसब अनहु पर करें फिर क्या माना? देखो ना मुतअल्लिक मुंतसब अनहु, मुंतसब अनहु से जो मुतअल्लिक है खुद मुंतसब अनहु नहीं है बल्कि उसका, तो क्या माना बनेगा? जैद का बाप। देखो जैद का जो बाप है वो जैद के साथ उसका ताल्लुक है या नहीं? जैद का जो घर है, घर का जैद के साथ ताल्लुक है या नहीं? जैद का इलम है, इलम का जैद के साथ ताल्लुक। तो ये चीजें मुतअल्लिक मुंतसब अनहु है, खुद मुंतसब अनहु नहीं है, इनका जैद के साथ ताल्लुक है। तो ये जो अबन है इसका इतलाक मुंतसब अनहु पर भी हो सकता है और मुतअल्लिक मुंतसब अनहु पर भी। तो मुतअल्लिक मुंतसब अनहु पर अगर इसका इतलाक हो फिर क्या माना होगा? जैद का बाप अच्छा है, यानी वो जैद की अच्छी तरबियत कर रहा है। तो मालूम हुआ तमीज जो है वो मुंतसब अनहु से भी हो सकती है और कभी मुतअल्लिक मुंतसब अनहु से भी हो सकती है और कभी दोनों से भी हो सकती है। ये यूं कहो कि तमीज कभी खास होगी किसके साथ? मुंतसब अनहु के साथ, यानी सिर्फ उसी पर उसका हमल हो सकता है, किसी और पर नहीं। जैसे ताबा जैदुन नफसन, ये नफ्स का इतलाक सिर्फ जैद पर हो सकता है क्योंकि जैद का नफ्स जैद से जुदा नहीं, जैद ही है। और कभी वो तमीज का इतलाक सिर्फ मुतअल्लिक मुंतसब अनहु पर हो सकता है, मुंतसब अनहु पर नहीं हो सकता। जैसे ताबा जैदुन दारन, ये दार का इतलाक जैद पर नहीं हो सकता बल्कि जैद के मुतालिक पर ही हो सकता है। और कभी दोनों पर उसका इतलाक हो सकेगा, मुंतसब अनहु पर भी और मुतालिक मुंतसब अनहु पर भी। जैसे जैदुन ताबा अबन, ये अब का इतलाक मुंतसब अनहु यानी जैद पर भी हो सकता है कि जैद अच्छा बाप है, और जैद के मुतालिक यानी जैद के बाप पर भी हो सकता है कि जैद का बाप अच्छा है यानी जैद की अच्छी तरबियत कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि तमीज ऐन भी हो सकती है और आरज भी, फिर दोनों के अंदर दो दो एहतमाल, वो ऐन जो है वो इजाफी भी हो सकता है और गैर इजाफी भी, और वो आरज जो है वो भी दो किस्म पर, या वो इजाफी होगा या गैर इजाफी। तो कितनी किस्में हो गई? चार। फिर इन चारों में से हर एक के अंदर, हर एक के अंदर तीन एहतमाल होंगे, या वो तमीज खास होगी किसके साथ? मुंतसब अनहू के साथ, या वो खास होगी किसके साथ? मुताल्लिक के मुंतसब अनहू के साथ, या उसका इतलाक दोनों पर हो सकेगा। तो चार में से हर एक के अंदर तीन एहतमाल आ गए, कितने हो गए? बारह। तवज्जो है, तमीज या क्या होगी? ऐन या आरज, फिर हर एक इजाफी होगा या गैर इजाफी, चार किस्में। फिर हर एक के अंदर तीन एहतमाल, या वो मुंतसब अनहू से होगी या मुताल्लिक मुंतसब अनहू से या दोनों से होने का एहतमाल। तो कुल कितनी किस्में बन गई? बारह किस्में ये बन गई भाई। और फिर वो जो निस्बत है, या वो जुमले में होगी या शिबे जुमले में होगी या इजाफत में, तो इस एतबार से तो 36 सूरतें बन जाती हैं। तो तमीज की मुख्तलिफ अनवा हैं, तो साहिब काफियन उन अनवा की तरफ इशारा करना चाहते हैं, इसलिए इतनी मिसालें उन्होंने जिक्र फरमाई। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा मतन मतन देखिए। ताब ज़ैदुन नफ्सन, ज़ैद अच्छा है नफ्सन बैतबार जात के। मुझे बताइए, इधर देखिए, नफ्स ऐन है या आरज है? नफ्स ऐन है, जात क्या है? ज़ैद की जात ऐन है, उसका अपना अलग वजूद है, मालूम हुआ आरज नहीं। और नीज इजाफी है या गैर इजाफी? गैर इजाफी है। नफ्स का समझना किसी दूसरी चीज के समझने पर मौकूफ नहीं, खावंद का समझना बीवी पर और बीवी का समझना खावंद पर मौकूफ था, मालिक का ममलूक पर और ममलूक का मालिक पर समझना मौकूफ था, बाप का समझना औलाद पर मौकूफ है और औलाद का समझना बाप पर मौकूफ है, उस्ताद का समझना शागिर्द पर मौकूफ है और शागिर्द का समझना उस्ताद पर मौकूफ है। आप किसी को उस्ताद का मफहूम बतलाना चाहते हैं, तो शागिर्द के जिक्र के बगैर उस्ताद का मफहूम आप उसे समझा ही नहीं सकते, और या आप शागिर्द का मफहूम समझाना चाहते हैं तो उस्ताद के जिक्र के बगैर उसको शागिर्द का मफहूम समझा ही नहीं सकते। ये है इजाफी, एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ। तो नफ्स तो ऐसा नहीं है, मालूम हुआ ये नफ्स ऐन है और गैर इजाफी है। और नीस मुंतसब अनहू पर इसका इतलाक हो सकता है, जैद की जात जैद से कोई अलग नहीं है, तो इसका इतलाक सिर्फ मुंतसब अनहू पर हो सकता है, मुताल्लिक मुंतसब अनहू पर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। अगली मिसाल देखिए, व ज़ैदुन तय्यिबुन अबन, यहां ये अबन, ये ऐन है या आरज है? अब बाप ऐन है, ये क्या है? ऐन, बाप का अपना अलग वजूद होता है, बेटे का अपना अलग वजूद होता है, तो ये अब ऐन है। और नीस ये इजाफी है या गैर इजाफी? ये इजाफी है, बाप का समझना औलाद के समझने पर मौकूफ है, ये ऐन इजाफी है। और नीस इसका इतलाक किस पर हो सकता है? दोनों पर हो सकता है, मुंतसब अनहू पर भी और मुताल्लिक मुंतसब अनहू दोनों पर हो सकता है। आगे आइए जरा, उबुवतन, ताब ज़ैदुन उबुवतन, उबुवत का माना है बाप होना, ये मस्तर है। ताब ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा है उबुवतन बएतबार बाप होने के। पहले का तर्जमा क्या था? ताब ज़ैदुन अबन, ज़ैद अच्छा है बाप के एतबार से, और अब ताब ज़ैदुन उबुवतन, ज़ैद अच्छा है बाप होने के एतबार से। देखो मस्तर वाला तर्जमा करें जी। अब मुझे बताइए, उबुवत ये ऐन है या आरज है? जी आरज है, उबुवत मस्तर है। मैंने बताया था मस्तर जो है वसफ होता है, ये हमेशा किसी की सिफत होता है। जर्ब, जर्ब का अपना अलग वजूद है ही नहीं, कोई जर्ब लगाने वाला होगा तो जर्ब पाई जाएगी, वरना जर्ब का अपना अलग कोई वजूद नहीं। तो ये मस्तर जो है इसका खारिज में अलग वजूद नहीं होता, ये किसी की सिफत होती है। तो ये उबुवत क्या है? आरज है, आरज है। और इजाफी है या गैर इजाफी? जी इजाफी है। बाप क्या था? बाप ऐन था। इजाफी था गैर इजाफी? इजाफी था, तो उसी से उबूवत भी है, तो ये भी क्या है? इजाफी है। बाप होना तभी समझ में आएगा जब औलाद होना समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई। तो उबूवत क्या है, ऐन है या आरज? عرض ہے اور اضافی ہے یا غیر اضافی؟ اضافی ہے. اور یہ تمیز ہے متعلق منتصب عنہ سے. اس کا اطلاق صرف متعلق منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے, منتصب عنہ پر نہیں, کیونکہ منتصب عنہ تو ہے مثلا زید, زید تو ہے ذات, اور ابوت مصدر ہے, اور مصدر کا حمل تو ذات پر نہیں ہو سکتا. کیا زید ابوت ہے؟ زید باپ ہونا ہے یا زید باپ ہے؟ زید باپ ہے, لیکن یہاں تو ابوت آ رہا ہے, مصدر آ رہا ہے, اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں, لہذا یہ ابوت اس کا حمل منتصب عنہ پر نہیں ہو سکتا. تو پھر اس صورت میں یہ تمیز ہے صرف کس سے؟ متعلق منتصب عنہ سے, یعنی یہ اس سے ابہام کو دور کر رہی ہے. یعنی زید کی ابوت اچھی ہے, جیسے زید کا گھر اچھا ہے, زید کا علم اچھا ہے, اسی طرح زید کی ابوت وہ اچھی ہے, یعنی زید میں ابوت والی صفت اچھی ہے. بات سمجھ میں آگے؟ تو یہ ابوت اس کا حمل زید پر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مصدر ہے, اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں. تو یہ تمیز ہے متعلق منتصب عنہ سے. بات سمجھ میں آگئی؟ دارن, دار کیا ہے؟ عین ہے یا عرض؟ گھر جو ہے یہ گھر عین ہے. گھر کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے, آپ کا گھر الگ ہے, زید کا گھر الگ ہے, عمر کا گھر الگ ہے, تو گھر کا اپنا الگ وجود ہے, یہ عین ہے. اور اضافی ہے یا غیر اضافی؟ یہ غیر اضافی ہے, عین غیر اضافی ہے. اور اس کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے؟ زید پر ہو سکتا ہے؟ زید گھر ہے نہیں, یہ تو یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ متعلق منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہے. وعلمن, علم بھائی یہ بھی مصدر ہے, علم کا معنی جاننا. تو یہ عین ہے یا عرض ہے؟ یہ عرض ہے. اضافی ہے غیر اضافی ہے؟ غیر اضافی ہے, یہ غیر اضافی ہے. اور اس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے؟ زید علم ہے نہیں. تو یہ بھی خاص ہے کس کے ساتھ؟ متعلق منتصب عنہ کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ چیزیں دیکھو, یہ ساری چیزیں زید سے متعلق ہیں بھائی. ابن دیکھو, زید کا ادھر دیکھو, ابن زید کا باپ, دیکھو زید کے باپ کا زید سے تعلق ہے یا نہیں. اسی طرح دار, زید کا گھر, دیکھو گھر کا بھی زید سے تعلق ہے. علم, زید کا علم, علم بھی کیا ہے؟ زید سے متعلق ہے. توجہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زید سے متعلق ہیں بھائی. آگے دیکھیے متن. او فی اضافتین, یا وہ نسبت کس میں ہوگی؟ اضافت میں ہوگی. مثل یعجبنی طیبہ, مجھے تعجب میں ڈالا طیبہ اس کے اچھا ہونے نے. تو طیبہ کی اضافت ہا ضمیر کی طرف ہے, یہ مصدر ہے, اور اس کے اس نسبت کے اندر ابہام تھا. آگے ابن و ابوتن و دارن و علمن, یہ انہوں نے کیا کیا؟ ابہام کو دور کیا. مجھے تعجب میں ڈالا اس کے اچھا ہونے نے, ابن باعتبار باپ کے, یا ابوتن یا باعتبار باپ ہونے کے, یا دارن یا باعتبار گھر کے, او علمن یا باعتبار علم کے. تو یہ بھی اسی طرح ساری مثالیں ہیں بھائی. اب آئیے سارے کو شرح کے ساتھ دیکھیے بھائی. نحو طاب زید نفسا مثال للجملتی, بھائی انہوں نے بتایا تھا بھائی تمیز کی دوسری قسم ابہام کو دور کرے گی نسبت سے. وہ نسبت جملے میں بھی ہو سکتی ہے, شبہ جملہ میں بھی, اور اضافت میں بھی. تو یہ جو پہلی مثال ہے یہ مثال کس کی ہے؟ جملے کی ہے. تو کہتے ہیں طاب زید النفسا مثال للجملتی, یہ مثال ہے جملے کی. والتمیز فیہ خاص بالمنتصب عنہ, اور اس کے اندر جو تمیز ہے وہ خاص ہے منتصب عنہ کے ساتھ. پھر بتلائیے منتصب عنہ کیا ترجمہ؟ منتصب, نصب دیا گیا, عنہ ای بسبب ہی, اس کی وجہ سے. منتصب عنہ اصل میں کیا ہے؟ نسبت ہے, لیکن مجازن کس کو کہہ دیتے ہیں؟ وہ جو فائل یا نائی فائل ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے نسبت آئی. تو کہتے ہیں والتمیز فیہ خاص بالمنتصب عنہ, اور تمیز اس کے اندر جو ہے وہ خاص ہے منتصب عنہ کے ساتھ, یعنی متعلق پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وَزَيْدٌ طَيِّبٌ أَبًا مِثَالٌ لِمَا يُشْبِهُ الْجُمْلَةَ, یہ مثال ہے شبہ جملہ کی. وَالتَّمْيِيزُ فِيهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ تُصِبَ عَنْهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ, اور تمیز جو ہے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ منتصب عنہ کے لیے ہو, وَلِمُتَعَلِّقِهِ اور اس کے متعلق کے لیے, دونوں کے لیے ہونے کا احتمال ہے. وحیث لا فرق, جی اب بتلانا یہ چاہتے ہیں. ادھر دیکھیے صاحب کافیہ نے دو مثالیں ذکر کی, پہلی مثال کیا طاب زید نفسا اور دوسری مثال کیا زید طیب ابن. ایک مثال ہے جس میں جملے کے اندر نسبت کے اندر ابہام تھا اور دوسری مثال ہے جس میں شبہ جملہ کے اندر نسبت کے اندر ابہام تھا. صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھنے میں یہ دو مثالیں حقیقت میں یہ چار مثالیں ہیں, کیونکہ اسنا چاہے جملے میں ہو شبہ جملہ میں ہو کوئی فرق نہیں ہے. تو گویا نفسن اور ابن کو دونوں کے ساتھ جوڑو, پہلے جملے کے ساتھ بھی جوڑ دو طاب زید نفسن و ابن, اور دوسرے کے ساتھ بھی دونوں کو جوڑ دو زید طیب نفسا و ابن. تو گویا کل کتنی مثالیں ہیں, چار مثالیں ہیں بھائی. کہتے ہیں وحیث لا فرقہ, اور اس حیثیت سے کہ کوئی فرق نہیں ہے, فی التمیز بین الجملتی وما ضاہا, جملہ اور شبہ جملہ کے درمیان تمیز میں, جملہ اور شبہ جملہ کے درمیان تمیز میں کوئی فرق نہیں ہے. فہذان المثالان فی قوت اربعۃ امثلۃ, تو یہ دو مثالیں جو ہیں چار مثالوں کے قوت میں ہیں, یعنی اس کے درجے میں ہیں. فکأنہ قال, تو گویا کہ صاحب کافیہ نے یوں فرمایا ہے طاب زید, دیکھو یہ جملہ و زید طیب, یہ طیب کیا ہے شبہ جملہ, آگے نفسا و ابن دونوں کی کٹھی تمیز لے آئے, تو گویا ہر ایک سے دونوں تمیزوں کو جوڑیں تو یہ چار مثالیں بن جاتی ہیں. تو کہتے ہیں فکأنہ قال, تو گویا کہ صاحب کافیہ نے یوں فرمایا ہے طاب زید و زید طیب نفسا و ابن. فقوله, تو ماتن کا قول جو ہے وہ ابوتا و دارا و علما, توجہ ہے یہ دیکھو بھائی آگے جو متن آ رہا ہے نا وہ ابوتا و دارا و علما, توجہ ہے پیچھے دو مثالیں گزری, پیچھے پہلی مثال کیا طاب زید نفسن, اس میں نفسن تمیز آئی, اگلی مثال کیا زید طیب ابن, اس کے اندر بھی ابن تمیز آئی, اور آگے معطوف آ رہے ہیں وہ ابوتا و دارا و علما, تین معطوف آ رہے ہیں. یاد رکھو ان تین کا عطف ما قبل میں وہ نفسن پر ہوگا یا ابن پر ہوگا, دونوں پر نہیں ہو سکتا, ایک پر ہوگا. آگے تین معطوف آ رہے ہیں کون کون, ابوتن دارن اور علمن, ما قبل میں معطوفن علیہ چاہیے تو ان کا معطوفن علیہ ایک ہو سکتا ہے, یا نفسن یا ابن. ابن ذرا قریب ہے اور معطوفن علیہ قریب ہو یہ پسندیدہ ہے, اور نفسن دور ہے لیکن بہرحال عطف اس پر بھی صحیح ہو جاتا ہے. تو ان کا عطف ان دو میں سے ایک پر ہے, لیکن صاحب جامی بتلائیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو پیچھے مثالیں ہیں طاب زیدن کی تمیز لائے نفسن, طاب زیدن کی تمیز صاحب کافیہ کیا لائے نفسن, اور زیدن طیبن کی تمیز کیا لائے ابن. اس کا یہ معنی نہیں کہ طاب زیدن کے لیے نفسن ہی تمیز آئے گی اور زیدن طیبن کے لیے ابن ہی تمیز آئے گی, نہیں, بلکہ صاحب کافیہ بس دونوں کی الگ الگ مثال ذکر کر دی, ایک جملہ ہے شبہ جملہ ہے اور دونوں کے ساتھ ایک ایک تمیز ذکر کر دی, لیکن یہ دونوں تمیزیں دونوں سے جڑ سکتی ہیں, دونوں تمیزیں دونوں سے جڑ سکتی ہیں. جب دونوں سے جڑ سکتی ہیں تو اگلی تینوں جو ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے ان سب سے جڑ جائیں گی. تو گویا ہر ایک کی پانچ پانچ مثالیں ہو گئیں, طاب زیدن اور آگے پانچوں تمیزیں اس سے بھی جڑ سکتی ہیں, اور زیدن طیبن اس کے ساتھ بھی پانچوں جڑ سکتی ہیں. تو گویا کس درجے میں ہے یہ کلام, گویا یہ دس مثالیں ہو گئیں, یہ دس مثالیں ہو گئیں, توجہ ہے. اور نیز یہ تین کا عطف, توجہ ہے, یہ تین کا عطف ماقبل میں ایک پر ہو سکتا ہے لفظوں کے اعتبار سے, لیکن معنی کے اعتبار سے گویا دونوں سے جڑی ہوئی ہے یہ, توجہ ہے. تو لہذا جب دونوں سے جڑی ہوئی ہے تو صاحب جامی پانچوں کو اکٹھا کر دیں گے, صاحب جامی بلکہ یوں کہو صاحب جامی نے پانچوں کو اکٹھا کر دیا. کس طرح, ابھی جو آخری عبارت پڑھی ذرا دوبارہ دیکھو, فکأنہ قال, گویا صاحب کافیہ نے یوں فرمایا ہے, طاب زیدن, یہ جملہ آ گیا, و زیدن طیبن, یہ شبہ جملہ آ گیا. آگے دیکھو, نفسوں و ابن, آگے متن کو بھی جوڑو, نفسوں و ابن و ابوتوں و داروں و علمن, دیکھو پانچوں کو جوڑ دیا, کیونکہ پانچوں کا دونوں سے تعلق ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں عطف علی نفس و ابن, یہ عطف ہے, عبارت پہ نظر ہے, عطف علی نفس و ابن, یہ جو ماتن کا قول ہے نا, ابوتوں و داروں و علمن, یہ معطوف ہے علی نفس و ابن, کس پر؟ نفس و ابن پر. یہاں پھر وہی اشکال ہوتا ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دیا, پیچھے نفسن اور ابن متن میں آئے تھے, بھئی دونوں پر تو عطف نہیں ہو سکتا, ایک وقت میں ایک پر عطف ہو سکتا ہے, تو میں نے بتلا دیا کہ معنی کے اعتبار سے دونوں پر ہے, لفظوں کے اعتبار سے تو ایک پر ہی عطف بنتا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے دونوں پر اس کا عطف ہے. تو کہتے ہیں عطف علی نفس و ابن, تو یہ معطوف ہے نفسن اور ابن پر, بحسب المعنی, کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. فہو ناظر الی کل من المثالین المذکورین, تو یہ ناظر ہے, دیکھنے والا ہے, یعنی ماتین کا یہ قول دیکھ رہا ہے, الی کل من المثالین المذکورین, دونوں مذکورہ مثالوں میں سے ہر ایک کی طرف, یعنی دونوں کی طرف اس کی توجہ ہے, دونوں معنی کے اعتبار سے یہ دونوں سے جڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں فہو ناظر, تو ماتین کا یہ جو قول ہے, کون سا قول؟ وَأُبُوَّتَوْا وَدَارَوْا عِلْمًا, یہ جو قول ہے یہ دیکھ رہا ہے, الٰى کل من المثالین المذکورین, دونوں مذکورہ مثالوں میں سے ہر ایک کی طرف, غیر مختص بالاخیری, یہ اخیر والی مثال کے ساتھ خاص نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی زید طیب ابن, یہ ابن کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ دونوں کی طرف دیکھ رہا ہے. فہو بحسب الحقیقت, تو گویا ماتن جو ہے حقیقت کے اعتبار سے, اورادا, لے کر آئے, لکل ای لکل واحد, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلوں کے لفظ پر تنوین آ جائے تو یہ عوض ہوتی ہے مضافون الی, ای لکل ای لکل واحد. تو کہتے ہیں فہو بحسب الحقیقت, تو ماتن جو ہے حقیقت کے اعتبار سے, اورادا, لے کر آئے, لکل من التمیز الواقع فی الجملۃ او ما ضاہاها خمسۃ امثلۃ, لے کر آئے ہر ایک کے لیے, یعنی وہ جو تمیز واقع ہے جملے میں, او ما ضاہاها, یا شبہ جملہ میں, ان میں سے ہر ایک کے لیے لے کر آئے, خمسۃ امثلۃ, پانچ مثالیں. فن نفس, اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں, وہ جو تفصیل ہم نے کر لی, نفس کیا تھا؟ عین ہے یا عرض ہے؟ عین ہے. اضافی ہے غیر اضافی؟ غیر اضافی ہے. اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ منتصب عنہ کے ساتھ. تو سب کی تفصیل بیان کریں گے. تو کہتے ہیں فن نفس و عین غیر اضافی خاص بالمنتصب عنہ, تو نفس جو ہے ایسی عین ہے جو غیر اضافی ہے اور خاص بالمنتصب عنہ, اور منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہے. والدار عین غیر اضافی, اور دار جو ہے ایسا عین ہے جو غیر اضافی ہے. وہو متعلق بالمنتصب عنہ, اور یہ منتصب عنہ سے متعلق ہے. والاب عین اضافی محتمل لہما, اور اب جو ہے ایسا عین ہے جو اضافی ہے, محتمل لہما, اور یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے. والابوت عرض اضافی, اور ابوت جو ہے یہ عرض ہے, ایسا عرض جو اضافی ہے. والعلم عرض غیر اضافی, اور علم جو ہے وہ ایسا عرض ہے جو غیر اضافی ہے. وکل واحد منہما, اور ان دونوں میں سے ہر ایک, یعنی ابوت اور علم, ان میں سے ہر ایک, متعلق بالمنتصب عنہ, یہ منتصب عنہ سے متعلق ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اوفی اضافتن, اس کا عطف کس پر تھا؟ وہ جو ماقبل میں فی جملتن آیا تھا, کہ وہ نسبت کس میں ہوگی؟ جملہ میں ہوگی یا شبہ جملہ میں, یا اضافت میں. تو کہتے ہیں او فی اضافت عطف علی قولہ فی جملت او ما ضاہاها, کہتے ہیں یہ معطوف ہے ماتن کے قول فی جملت او ما ضاہاها پر, مثل و مثال کے طور پر, یعجبنی طیبہ. توجہ سے بھئی یہ متن دیکھو, یعجبنی طیبہ, آگے آ رہا ہے ابن و ابوتا و دارا و علما. یہاں چار تمیزیں لے کر آئے صاحب کافیہ, ابن, ابوتا, दारन और इल्मन, नफसन को जिक्र नहीं किया, हालांकि पीछे एक पांचवी तमीज नफसन भी जिक्र थी। और साहिबे जामी उसको लेकर आए हैं, वो फरमाते हैं मिसलो यो अजीबुनी तीबुहु नफसन, नफसन को भी ले आए। भाई साहिबे काफिया ने क्यों नहीं जिक्र किया इसको, आपने क्यों इसको शामिल कर दिया? तो साहिबे जामी बताएंगे कि भाई चूंकि नफसन सबसे जाहिर थी, तमीज के एतबार से सबसे ज्यादा जाहिर थी और यह आम इस्तेमाल होती रहती है, इसलिए इसको दोबारा जिक्र नहीं किया, बाकियों को जिक्र कर दिया। मसलन मैं कहता हूं ताब जैद नफसन, जैद अच्छा है, किस एतबार से? अपनी जात के एतबार से नफसन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है भाई, तो लिहाजा इसलिए इसको छोड़ दिया, वरना यह भी पांच ही मिसालें हैं भाई। तो कहते हैं यो अजीबुनी तीबुहु, मुझे ताज्जुब में डाला उसके अच्छा होने ने नफसन बेतबार जात के, व ताराका हु, साहिब काफिया ने इस नफसन को छोड़ दिया, ले अन्नहु अजहरु तमीजाती, इसलिए क्योंकि ये तमाम तमीजों में सबसे ज्यादा जाहिर है, वला खफा अभी ही, और इसमें किसी किस्म का कोई खफा नहीं है। तवज्जो है, यह खफा लफ्ज खा के फतहा के साथ पढ़ना याद रखना, खफा, और इसमें कोई खफा नहीं है, यानी कोई पोशीदगी नहीं है। वह अबं व उबू वतं व दारं व इल्मन औरदा हादिहिल अम्सिला ताला वफ़्क़िमा सबका, औरदा लेकर आए साहिब काफिया हादिहिल अम्सिला ता, ये वाली मिसालें, अला वफ़्क़ि, वफ़्क़ बमाने मुआफिक और मुताबिक के है, अला वफ़्क़ि मा सबका, माकबल के मुआफिक, ये मिसालें भी साहिबे काफिया माकबल के मुआफिक लेकर आए, यानी जैसे ये तमीज जैसे जुमले या शिबे जुमला से आ सकती है, इसी तरह इजाफत से भी आ सकती है। तो ये मिसालें लेकर आए, अला वफ़्क़ि मा सबका, माकबल के मुआफिक, वजाद अलैहि कौलुहु, और साहिबे काफिया ने इस पर अपने इस कौल को बढ़ा दिया, वलिल्लाहि दर्रुहु फारिसन, और अल्लाह ही के लिए है उसका कमाल बैतबार शहसवार होने के। फारिस भाई, फारिस शहसवार को कहते हैं, घुड़सवार भाई, कोई बड़ा ही माहिर घुड़सवार हो तो अरब बतौर ताज्जुब के कहते हैं लिल्लाही दर्रुहु फारिसन, अल्लाह ही के लिए उसका यह कमाल है बैतबार शहसवार होने के, यानी यह इतना बड़ा कमाल है ये खुद तो हासिल कर ही नहीं सकता, यह अल्लाह ने इसको खास तौर पर अता फरमाया है। तो ये लिल्लाही दर्रुहु फारिसन, ये जुमला, इस किस्म का कलाम अरब बतौर ताज्जुब के कहते हैं। जब किसी शख्स में कोई बहुत बड़ा कमाल देखते हैं और उस पर हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हैं, तो उस वक्त वो कहते हैं, मसलन किसी में घुड़सवारी और शहसवारी कमाल दर्जे की देखी तो वो कहते हैं लिल्लाही दर्रुहु फारिसन, अल्लाह ही के लिए है उसकी खूबी, उसका कमाल बेतबार शहसवार होने के, यानी वो कितने कमाल दर्जे का शहसवार है। और यहां निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते हैं, अल्लाह ही के लिए है उसका कमाल, यानी ताज्जुब का इजहार करते हैं कि यह तो इतना बड़ा कमाल है, इतनी बड़ी खूबी है कि इसको यह शख्स खुद हासिल कर ही नहीं सकता, यह तो खास तौर पर अल्लाह ही ने इसको अता फरमाई है, तो इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते हैं भाई। तो यह कलाम अरब बतौर ताज्जुब के कहते हैं। अच्छा देखिए भाई, कहते हैं वलिल्लाहि दर्रुहु फारिसन, अल्लाह ही के लिए है उसका कमाल बैतबार शहसवार होने के। ये एक और मिसाल ले आए साहिब काफिया, एक और मिसाल ले आए, हालांकि पीछे कोई 15 मिसालें साहिब काफिया ने जिक्र कर दी और फिर 16वीं मिसाल लाने की क्या हाजत थी। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि ये जो मिसाल लाए हैं साहिब काफिया, ये दो वजह से लाए हैं। एक तो ये वो बतलाना चाहते हैं कि तमीज मुश्तक भी वाके हो सकती है। फारिस, देखो इसमें फाइल का सिगा है, इसमें अभी तक जितनी पीछे तमीजें जिक्र हुई, अबन उबुवतन वगैरह, इनमें एक भी मुश्तक नहीं थे, सब गैर मुश्तक थे भाई। या वो इसमें जामिद होगा, या उबूवत मस्तर था, या इलम मस्तर था, तो वो तो मुश्तक मिनहू है, मुश्तक तो कोई भी नहीं था। तो अब ये फारिस लफ्ज ये वाली मिसाल लाकर बतलाना चाहते हैं कि तमीज मुश्तक भी वाकई हो सकती है, और नीज बाज उलमा का रद्द करना मकसूद है। बाज उलमा फरमाते हैं कि तमीज हमेशा गैर मुश्तक होगी। साहिब काफिया ने बतलाया कि नहीं, मुश्तक भी तमीज हो सकती है। तो एक वजह यह कि मिसाल किस लिए लाए साहिब काफिया, यह बतलाना चाहते हैं कि तमीज कभी कभार मुश्तक भी हो सकती है। देखिए भाई किताब पर, दूसरी वजह आगे मैं बयान करता हूं भाई। कहते हैं वलिल्लाहि दर्रुहु फारिसन, और अल्लाह ही के लिए उसका कमाल है बैतबार शहसवार के, इशारतन इशारा करने के लिए, इला अन्न तमीज कद यकूनु सिफतन मुश्तकतन, के तमीज जो है वो कभी कभार सिफत मुश्तका भी होती है। दूसरी वजह आप जिक्र करेंगे कि वजह यह कि यह काफिया माखूज है मुफस्सल से, और मुफस्सल किताब है अल्लामा जमखशरी की, और अल्लामा जमखशरी ने इस मिसाल को जिक्र फरमाया है तमीज की पहली किस्म की मिसाल के तौर पर। भाई तमीज की दो किस्में ना, तमीज की पहली किस्म मुफरत से इबहाम को दूर करती है, तमीज की दूसरी किस्म निस्बत से इबहाम को दूर करती है, तवज्जो है। तो साहिबे मुफस्सल ने ये जो लिल्लाहि दर्रुहु फारिसन है इसको जिक्र किया है तमीज की पहली किस्म की मिसाल के अंदर। किस तरह वो फरमाते हैं लिल्लाहि दर्रुहु, कि दर्रुहु की यह हा जमीर मुबहम है, दर्रुहु की हा जमीर मुबहम है, पता नहीं किसको लौट रही है भाई, पीछे कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसके अंदर इबहाम था, आगे फारिसन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया। तवज्जो है। तो ये तमीज की पहली किस्म की मिसाल के तौर पर उन्होंने इसको जिक्र किया। याद रखो कलाम अरब में कभी कभार मुबहम जमीर लाई जाती है और फिर आगे तमीज लाकर उसके इबहाम को दूर किया जाता है, जैसे इस मिसाल में है लिल्लाहि दर्रुहु। अब ये हा जमीर मुबहम है, किसको राजे कुछ पता नहीं, इंसान को राजे है या गैर इंसान को राजे है, आगे फारिसन ने आकर इबहाम को दूर कर दिया कि इससे कौन मुराद है, फारिस घुड़सवार मुराद है, कोई और चीज मुराद नहीं है। यह दूसरी मिसाल ले लो नियमा रजुलन, नियमा फेला जफाले मदा है, इसके अंदर हुआ जमीर मुबहम है और आगे रजुलन ने आकर इबहाम को दूर किया, तो यहां पर भी इसी तरह। तो मुझे अब बताइए ये पहले किस्म की मिसाल बनाई साहिबे मुफस्सल ने, और पहले किस्म के अंदर तमीज को नसब कौन देता है, मैंने बताया था वो जो इसमें ताम होता है वो नसब देता है, हिंदी रेतलुन जैतन, ये जैतन को नसब किसने दिया, रेतलुन ने, और ये रेतलुन ताम हो रहा है किसके जरिए, तनवीन के जरिए, और वो इसम जो ताम हो तनवीन के जरिए या उन्होंने तस्निया के जरिए या उन्होंने जमा के जरिए या इजाफत के जरिए वो फेल के मुशाबे होता है और वो तमीज को आगे नसब देता है। लेकिन बाज औकात कोई इसम अपनी जात के एतबार से ही ताम होता है तो वो भी तमीज को नसब देता है और वो जमीर है, मैंने जिक्र किया था जमीर, न इस पर तनवीन आ रही है, न नूने तस्निया है, न नूने जमा है, ना इजाफत है, लेकिन ये अपनी जात के एतबार से ताम है ये जमीर, लिहाजा ये आगे तमीज को नसब दे सकती है, लिहाजा ये फारिसन को नसब किसने दिया, हा जमीर ने नसब दिया। बात समझ में आ गई। तो साहिब मुफस्सल ने इसको तमीज की पहली किस्म की मिसाल बनाया है, लेकिन साहिब काफिया इस मिसाल को खास तौर पर तमीज की किस्म सानी के अंदर लाए कि यह किस्म सानी की भी मिसाल बन सकता है, कि यह हा जमीर को मुबहम न रखें, यह पीछे किसी मुअय्यन की तरफ लौटा दें, मसलन पीछे जैद का जिक्र आया था, यह हा जमीर आपने किसकी तरफ लौटा दी, जैद की तरफ, तो अब इस जमीर के अंदर कोई इबहाम नहीं है, हां यह जो दर्रुन की इजाफत हो रही है हा जमीर की तरफ, यह जो इजाफत यह जो निस्बत है मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान, इस निस्बत में इबहाम हो कि जैद किस एतबार से अच्छा है, फारिसन ने आकर क्या किया, उस इबहाम को दूर कर दिया। तो यह तमीज की किस्म सानी की भी मिसाल बन सकती है। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि साहिब मुफस्सल ने इसको मिसाल बनाया तमीज की पहली किस्म के लिए, बिनाबर इसके कि यह जमीर मुबहम हो और फारिसन आकर उससे इबहाम को दूर कर दे, जबकि साहिब काफिया इसको तमीज की दूसरी किस्म के अंदर मिसाल के तौर पर लाए हैं, बतलाना यह चाहते हैं कि यह तमीज की दूसरी किस्म की भी मिसाल बन सकता है, बई लिहाज कि यह हा जमीर मुतायन भी हो सकती है, मसलन पीछे जैद का जिक्र चल रहा था, अब उसके बारे में आप कहते हैं लिल्लाहि दर्रुहु फारिसन, अब यह हा जमीर जैद को राजे है, पीछे मर्जे जिक्र हो चुका है, तो इस हा जमीर में कोई इबहाम नहीं, यह मुतायन है और मालूम है, तो अब जमीर में तो कोई इबहाम नहीं, लेकिन अलबत्ता ये जो दर की निस्बत हा जमीर की तरफ हो रही है कि अल्लाह ही के लिए है जैद का कमाल, इबहाम था भाई कौन सा कमाल मुराद है, किस एतबार से उसकी तारीफ की जा रही है, तो आगे फारिसन ने आकर उस निस्बत से इबहाम को दूर कर दिया कि जैद की तारीफ घुड़सवारी के एतबार से की जा रही है कि जैद बड़ा अच्छा घुड़सवार है। बात समझ में आ गई। तो हासिल क्या हुआ कि साहिब मुफसल इसको लाए हैं तमीज की पहली किस्म की मिसाल के तौर पर कि यह हाजमीन मुबहम हो और फारिसन आकर उसे इबहम को दूर करे, और साहिब काफिया बतलाना यह चाहते हैं कि यह तमीज की दूसरी किस्म की मिसाल भी बन सकती है अगर यह हाजमीन मुतायन और मालूम हो तो फिर इसमें तो कोई इबहम नहीं। हां, दर उनकी जो निस्बत इसकी तरफ की जा इस हाजमीन की तरफ है, जो इजाफत हो रही है उसमें इबहम है और फारिसन आकर उस इबहम को दूर कर देगा। देखिए भाई अब तर्जमा देखिए, दूसरी वजह बयान कर रहे हैं, वह ऐजन लम्मा और दहू साहिबुल मुफस्सली मिसालन लितमयीज़िल मुफ़रदी, और नीज इसलिए कि जब साहिब मुफस्सल लाए हैं इस कौल को, ये जो ऊपर आया ना वलिल्लाही दर्रुहु फारिसन, जब साहिब मुफस्सल इस कौल को लाए हैं मिसालन लितमयीज़िल मुफ़रदी, बतौर मिसाल के तमीज मुफ़रद के लिए, तर्जमा समझ में आ रहा है, फिर सुनो, व ऐसन लम्मा और दहू साहिबुल मुफस्सली मिसालन लितमयीज़िल मुफ़रदी, और नीज जब साहिब मुफस्सल इस कौल को तमीज मुफ़रद की मिसाल के तौर पर लाए हैं, अला अन यकूना ज़मीरु फीही मुबहमन, बिना बर इसके कि इसके अंदर जो जमीर है वो मुबहम हो, का ज़मीर रुबहू रजुलन, जैसे रुबहू रजुलन, देखो रुबहू रजुलन इसके अंदर यह हा ज़मीर मुबहम है और रजुलन तमीज ने आकर उससे इबहाम को दूर कर दिया कि इससे रजुल मुराद है, कोई और चीज मुराद नहीं। तो कहते हैं साहिब मुफस्सल इसको मुफरत की तमीज की मिसाल के तौर पर लेकर आए हैं कि आला अन यकूना जमीर फीही मुबहमन, बिना बर इसके कि इसके अंदर जो जमीर है वो मुबहम हो, का जमीर रुबहू रजुलन, जैसे रुबहू रजुलन की जमीर है, व यकून फारिसन तमीजन अनहु, और फारिसन जो है फिर इससे तमीज हो, वो जमीर मुबहम हो और फारिसन उससे तमीज हो, अरादा, तो इरादा किया साहिबे काफिया ने, भाई साहिबे मुफस्सल तमीज की पहली किस्म की मिसाल के तौर पर लाए थे, तो अरादा इरादा किया साहिबे काफिया ने, अय्युनबिहा कि वो इस बात पर तंबीह कर दें कि अला अन्नहु यस्लुहु अन यकून तमीजन अन निस्बतिन, कि अला अन्नहु यस्लुहु कि ये फारिसन का लफ्ज ये सलाहियत रखता है, अन यकून तमीजन अन निस्बतिन कि निस्बत से तमीज हो, ये फारिसन ये सलाहियत रखता है कि निस्बत से तमीज हो, अला अन यकून ज़मीर फीही मुअय्यनन मालूमन, बिना बर इसके कि इसके अंदर जो जमीर है वो मुअय्यन और मालूम हो, मुअय्यन और मालूम हो, वल इबहाम यकून फी निस्बति दर इलैही, और इबहाम जो है वो जो दर की निस्बत की जा रही है इस जमीर की तरफ उसके अंदर इबहाम हो भाई। तो इस सूरत में ये तमीज की किस्म सानी की मिसाल भी बन सकती है, बात समझ में आ गई। वदर रुफिल असलिल्ला बनू, यहां से लफ्ज दर की तहकीक कर रहे हैं, आपको बतला रहे हैं कि दर उन अरबी जुबान में दूध को कहते हैं, और दूध के अंदर चूंकि अरबों के लिए सबसे ज्यादा नफा था, उनकी गुजर बसर ही दूध पर होती थी, वो अरब रेगिस्तानी इलाका है, फसलें वहां नहीं होती, ये खाना बदोश लोग थे, जहां कहीं पानी मिलता वहां डेरा डाल लेते और फिर जब पानी खत्म होने लगता तो वहां से कूच करके किसी दूसरे इलाके में जहां पानी मौजूद होता वहां चले जाते थे। तो इन जानवरों के दूध पर ही इनका गुजर बसर था, बड़े बड़े जानवरों के गले रखे होते और उसी पर गुजारा करते और जिंदगी गुजार थे। तो इस दूध को अरबी जुबान में दर्रुन कहते हैं, तो चूंकि अरबों के लिए सबसे ज्यादा खैर जो है वो दूध के अंदर थी, इसी पर उनकी जिंदगी का दारोमदार था, तो जिस चीज के अंदर भी फिर वो खैर और कमाल और खूबी देखते तो उसके लिए भी दर्रुन का लफ्ज इस्तेमाल करने लगे। तो चुनाचे यहां पर भी जो आया लिल्लाही दर्रुहु फारिसन, यहां भी दर्रुन खैर यानी कमाल और खूबी के माने में है, अल्लाह ही के लिए है उसका कमाल बेतबार शहसवार के भाई। तो कहते हैं वह दर रुफिल असलिल्ला बनू, और दर जो है असल में यानी अरबी जुबान में लुगत में, तो कहते हैं वह दर रुफिल असलिल्ला बनू, और दर जो है अरबी जुबान के अंदर अल्लाह बनू वह दूध है, वफी ही खैरुन कसीरुन लिल अरबी, और इसके अंदर अरब के लिए खैर कसीर है, फउरीद बिहिल खैरु, तो इसके जरिए खैर का इरादा किया गया यानी खैर के लिए अब दर का लफ्ज बोलने लगे हैं अरब भाई। ऐ लिल्लाही खैरुहु फारिसन, यानी अल्लाह ही के लिए उसकी खैर है यानी उसका कमाल और उसकी खूबी है बैतबार शहसवार के। वल फारिस उस्मुल फाइल मिन अल फरासत, यहां से फारिस की तहकीक कर रहे हैं कि फारिस आपको बतलाएंगे भाई कि फारिस जो है ये फरुसा यफरुसु फरासतन से है, फरुसा यफरुसु फरासतन ये बाबे करुमा है और इसे मस्दर फरासत आता है फाके फतहा के साथ, और इसका माना है घोड़ों के उमूर का माहिर होना, घुड़सवारी का माहिर होना, फरुसा या फरुसु फरासतन। और इसी तरह एक बाबे जराबा से आता है फरासा या फरीसु फिरासतन, वहां फा के नीचे कसरा है, लेकिन फरासा या फरीसु फिरासतन का माना है समझदार होना, दाना होना, यानी जाहिर से ही बातिन का अंदाजा लगा लेना, चीजों के जाहिर को देखकर ही बातिन का अंदाजा लगा लेना। भाई तो आपको साहिबे जामी बतलाएंगे कि ये जो फारिस इसमें फाइल आया ये फरासत से है, यानी फा के फतहा के साथ, ये फिरासत फा के कसरा के साथ उससे माखूज नहीं, क्योंकि उसका तो माना है समझदार होना और यहां फारिस का क्या माना है घुड़सवार। भाई तो कहते हैं वल फारिस उस्मुल फाइल मिनल फरासति बिल फतह मसदरु फरुसा बिज़म्मी, और फारिस इसमें फाइल है फरासत से बिल फतह जो फा के फतहा के साथ है, मसदरु फरुसा बिज़म्मी, और ये मस्तर है फरुसा का बिज़म्मी जो ऐन के जम्मा के साथ है। ऐ हाजा का बि अमरिल खैली, ये फरुसा का क्या माना है, ऐ हाजा का बि अमरिल खैल, वो माहिर हुआ घोड़ों के मामलात का। वह अमल फिरासत बिल कसरी, और बाकी फिरासत फा के कसरा के साथ, फमीना तफर्रुस, वो किससे है तफर्रुस से है, तवज्जो है, वो तफर्रुस, तफर्रुस का माना दाना होना, समझदार होना, जाहिर से ही बातिन का अंदाजा लगा लेना। भाई देखिए साहिबे जामी फरमा रहे हैं कि फारिस फरासत से है और फरासत मस्तर है किसका, फरुसा का, और फरुसा देखो सुलासी मुजर्रद है, और आगे क्या फरमाया वह अमल फिरासतु फमिन तफरुस, बाकी फिरासत वो तफरुस से है। हालांकि याद रखना ये फिरासत ये सुलासी मुजर्रद का मस्तर है, फरासा यफरिसु फिरासतन ये सुलासी मुजर्रद का मस्तर है, और तफरुस बाबे तफाउल है और बाबे तफाउल सुलासी मजीद फी है, तो कहना यूं चाहिए था कि तफर्रुस फिरासत से है। भाई सुलासी मजीद किससे बनता है, सुलासी मुजारत से बनता है, तो यूं कहना चाहिए था ये तफर्रुस किससे बना है, फिरासत से बना है, क्योंकि वो फिरासत सुलासी मुजारत से है। लेकिन साहिब जामी क्या फरमा रहे हैं कि फिरासत तफर्रुस से है, यानी सुलासी मुजरद किससे है, सुलासी मजीद फी से। तो आपके जहनों में इश्काल आएगा कि ये तो बरअक्स फरमा रहे हैं, तो याद रखना ये और किताबों में भी जगह जगह आपको मिलेगा। तवज्जो है, कभी कभार सुलासी मजीद फी एक माना के अंदर ज्यादा मशहूर होता है, जब वो एक माना में ज्यादा मशहूर हो तो वहां इस तरह कह देते हैं कि ये सुलासी मुजर्रद उस सुलासी मजीद फी से मुश्तक है। तो यहां पर भी तफर्रुस ज्यादा मशहूर है, इसलिए क्या कह दिया साहिबे जामी ने कि ये फिरासत किससे है, तफर्रुस से है। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया सारा। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।